जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तो बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सोते रो आधे जय राधा माधव जय कुंज बिहार
माधव माधव Thank you.
श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की
जय।
श्री कृष्ण बलराम की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 8। श्री ब्रह्मो वाच अजात जन्म स्थिति संयमाया
अजात जन्म स्थिति संयमाया
गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय
गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय
अणोरणिम् ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते
महानुभावाय नमो नमस्ते
अजात जन्म स्थिति संयमाया
अजात जन्म स्थिति संयमाया
गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम् ने परिगण्य धाम्ने
अणोरणिम् ने परिगण्य धाम्ने
महानुभावाय नमो नमस्ते
महानुभावाय नमो नमस्ते
अजात जन्म स्थिति संयमाया
अजात जन्म स्थिति संयमाया
गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय
गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय
अणोरणिम् ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते
महानुभावाय नमो नमस्ते
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य आज परम पवित्र दिन है। भगवान को प्रिय तिथि जिसे माधव तिथि कहा जाता है, एकादशी व्रत एकादशी तिथि है और उस एकादशी में भी इस वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी जिसे पांडव एकादशी कहा जाता है। इस संसार में जितने भी व्रत किए जाते हैं ये सभी व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। व्रत रहने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है और प्रायः हमारे भारतवर्ष में श्रद्धालु धार्मिक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रहते हैं, परंतु यह व्रत जो है शास्त्रोक्त होना चाहिए। शास्त्र में जिस व्रत को रहने के लिए कहा गया है वह व्रत यदि हम करते हैं तो निश्चित भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु शास्त्र में बताया नहीं है और हमारे मनमाने ढंग से यदि हम कोई व्रत रहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मनमाने ढंग से व्रत करेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि भगवान किस वस्तु से प्रसन्न होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, यह जरूरी नहीं है कि हमारे मन में यह भगवान की इच्छा प्रकट हो। हमारी सोच हमारा मन गलत भी हो सकता है और प्रायः कलयुग में सबका मन गलत जगह पर ही जाता है। भगवान ने शास्त्र में बताया है कि मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। भगवान शास्त्र के द्वारा हम सब जीवों को कहते हैं कि यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि शांति को प्राप्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो तो समस्त यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं, मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए व्रत करो। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। वैसे व्रत तो बहुत सारे होते हैं, परंतु एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। और एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम सबको जो शास्त्र में कहा गया है उस बात को स्वीकार करना चाहिए। हमारे गांव में क्या होता है, कुछ लोग व्रत रहते हैं, पूछा जाए आप व्रत क्यों रहते हो, कहती वो रहती है इसलिए मैं भी रहती हूं। बोलते वो क्यों रहती है, वो रहती थी इसलिए मैं रहती हूं। तो यह जरूरी नहीं है कि वो जो व्रत रहती है वो सही व्रत है। वह मूर्ख हो सकते हैं, हमें मूर्ख नहीं बनना है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र में जो बताया गया है उस बात को सुनकर पढ़कर अपने जीवन में धारण करता है। अनेकों पुराण में, वेदों में, शास्त्र में एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है, और उनमें यही कहा गया है कि एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। शास्त्र में यह घटना भी बताई गई है, शंकासुर नाम का असुर जिसका वध भगवान श्री विष्णु ने किया, और उनका पुत्र था मूर। यह मूर शिव जी की तपस्या करके, शिव जी को प्रसन्न करके शक्तिशाली बना और देवताओं को परेशान करने लगा। समस्त देवता भगवान के शरण में आए। भगवान ने देवताओं को कहा कि आप मूर के साथ युद्ध करो, मैं उस युद्ध में आ रहा हूं। देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, परंतु भगवान की अद्भुत लीला, युद्ध करते करते भगवान उस रणभूमि से भाग गए। मूर ने देखा कि यह विष्णु भाग रहा है, विष्णु का पीछा किया। बहुत भागे, भागते भागते भगवान एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर और उनकी सारी सेना गुफा के बाहर खड़ी है, भगवान को ललकार रही है, परंतु भगवान बाहर निकले नहीं। और जब मूर अंदर प्रवेश किया तो भगवान सो रहे थे। ये मूर नाम के असुर को बहुत क्रोध आया, और उस समय सोए हुए भगवान के ऊपर तलवार लेकर वार करने गया। शास्त्र का एक नियम है, 10 प्रकार के लोगों के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। मत्तम, प्रमत्तम, अनुमत्तम, बालम, स्त्रियम, विरथम, जड़म। जो मत है, अनुमत है, जो बालक है, स्त्री है, जिसके पास रथ नहीं है, शस्त्र नहीं है, जो सो रहा है, ऐसे 10 प्रकार के लोगों के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। परंतु यह मूर सोए हुए भगवान के ऊपर वार करने गया, उसी समय भगवान से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, और वह शक्ति ने मूर्तिमान रूप धारण किया, 16 साल की कन्या बन गई। और वह कन्या एक ही झटके में मूर की सारी सेना को विध्वंस कर दिया, और मूर की सेना को मारने के बाद वह कन्या जैसे ही मूर को मारने गई, तुरंत वह अपराधी मूर देखा कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, अब बचने के लिए एक ही रास्ता है, तुरंत वह असुर मूर भगवान की शरण में आ गया, शरणागत हो गया, भगवान जग गए। परंतु अपने भक्तों को बहुत दुखी किया था। भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। मूर ने प्रार्थना की, हाथ जोड़े, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, आप इस दुनिया से निकाल रहे हैं, कहीं तो रहने का स्थान दीजिए, कुछ स्थान तो बताइए जहां पर मैं रह सकूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, आज के दिन मैं तुम्हें अन्न में स्थान दे रहा हूं। उस दिन एकादशी तिथि थी और एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने ये मूर नाम के असुर को अन्न में स्थान दिया है, इसलिए एकादशी ते अन्न ना खाई वे। भगवान साक्षात कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और उसी समय मूर तो एकादशी के दिन अन्न में स्थान प्राप्त कर लिया और भगवान ने उस कन्या को कहा कि तुम कौन हो। आचार्यों का कहना है कि उस 16 साल की कन्या ने कहा मैं एक दासी हूं, ऐसा कहने के कारण उस कन्या का नाम एकादशी हुआ, अथवा उस कन्या का जन्म एकादशी के दिन हुआ था इसलिए उनका नाम एकादशी रखा गया। जो भी हो, उस एकादशी को भगवान ने अद्भुत वरदान दिया। कहते न भूतो न भविष्यति, भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुमने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे व्रत का पालन करेगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। जो भक्ति बहुत दुर्लभ है, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं नृदेव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करना ये तो उससे भी दुर्लभ है। रूप गोस्वामी भक्ति के बारे में जब बताते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भक्ति ही सुदुर्लभा, ये भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते, इस ब्रह्मांड में न केवल पृथ्वी अपितु पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक मरलोक तपलोक सिद्धलोक ब्रह्मलोक तक, ये पूरे ब्रह्मांड में अनेकों जीव रहते हैं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, बंगाली भाषा में साक्षात चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि रूप, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण, अनंत जीव इस ब्रह्मांड में रहते हैं। और यदि इसका वर्गीकरण किया जाए, डिस्टिंग्विश किया जाए, तो ये जीवों की संख्या 84 लाख योनि में है। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव जल में, स्थावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षीणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लक्षाणी पशव 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु, और 4 लक्षाणी मानुष और 4 लाख प्रकार के मनुष्य, इस प्रकार 84 लाख प्रकार की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare
सौभाग्य एकादशी तिथि और इस एकादशी में भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर, यही है एकादशी का पूर्ण लाभ। कहते हैं एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का अर्थ मात्र भूखे पेट रहना ही नहीं है। उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट, नजदीक, और वास का अर्थ होता है बैठना। उपवास का अर्थ होता है भगवान और भक्तों के निकट बैठना। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट रहना चाहिए। फिर चाहे शरीर से मंदिर में बैठे हो, कान से कथा में बैठे हो, वाणी से कीर्तन में बैठे हो, ये सब भगवान के निकट उपवास के अंतर्गत आता है। एकादशी और एकादशी में भी आज पांडव एकादशी। पांडव एकादशी की बहुत महिमा है। पुराणों में वर्णन है, एक दिन श्री वेद व्यास जी ने एकादशी की बहुत महिमा सुनाई। अनेकों पुराणों में एकादशी के बारे में कहा गया है, एकादशी तु अन्न, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी में अन्न खाने वाला मांस खाने वाले के बराबर है। एकादशी के दिन उपवास रहना और ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे, कौरव और पांडव सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ और प्रवचन के बाद पांडवों में जो मंजले भैया है, भीमसेन जी वेद व्यास जी के पास आए। भीम तो आप जानते हैं, भगवद गीता में जिसे वृकोदर कहा गया है, वृक उदर, बहुत खाने वाले। देखिए, खाना कोई पाप नहीं है, परंतु जितना भोजन करते हैं उतना भजन भी करना चाहिए। ये सत्य है कि भीम भोजन बहुत करते थे, परंतु काम भी उतना करते थे। वेदव्यास जी ने एकादशी की महिमा सुनाई और एकादशी की महिमा सुनने के बाद प्रवचन समाप्त हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद भीम ने वेदव्यास जी को प्रश्न पूछा कि हे वेदव्यास जी, आपने तो एकादशी के बारे में बहुत सुनाया, परंतु मैंने मेरे जीवन में कभी एकादशी व्रत का पालन नहीं किया है, और आपने यहां तक कह दिया एकादशी व्रत नहीं रहने वाला नरक में जाता है। तो हे वेदव्यास जी, अब तो मैं नरक में जाऊंगा, बताइए नरक में जाने से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब वेदव्यास जी भीम को कहते हैं कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, आने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी के दिन तुम निर्जला उपवास करोगे तो पूरे साल भर की एकादशी का फल इस एक एकादशी में मिल जाएगा। हम लोग भी, हमारे जीवन में कई एकादशी आती हैं, परंतु कभी भूल जाते हैं तो कभी टूट जाती हैं, और कुछ लोग रहते ही नहीं हैं। परंतु आज के दिन यदि कोई निर्जला उपवास करता है तो उसे साल की समस्त एकादशी का फल इस एक एकादशी में प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि वृकोदर अति भोजी, बहुत भोजन करने वाले भीम ने भी आज निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। हम भीम तो नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हम निर्जला एकादशी नहीं रह सकते हैं, परंतु भीम ने निर्जला एकादशी की तो हम तो रह सकते हैं, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो ऐसी पवित्र तिथि आज है और इस पांडव एकादशी के दिन भागवत का तृतीय दिन, तृतीय दिवस। आइए कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। मन्वंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी चाक्षुष मन्वंतर की कथा, जिनमें देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ है, कथा आपने सुनी। स्वर्ग के अधिपति इंद्र भगवान और दुर्वासा ऋषि का अपराध किए और इस अपराध के कारण दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। दुर्वासा के श्राप के कारण देवता श्रीहीन हुए, असुरों के साथ युद्ध हुआ और असुर गण इसमें विजयी हुए। इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा, तब वापस स्वर्ग प्राप्त करने के लिए इंद्र समेत ब्रह्मा जी, शिव जी, ये समस्त देवता क्षीर सागर के तट पर जाते हैं भगवान श्री विष्णु की सहायता लेने के लिए। क्षीर सागर के तट पर आकर ये सभी देवता भगवान को स्तुति करते हैं और उस स्तुति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का अद्भुत स्वरूप कल हमने श्रवण किया, किस प्रकार से भगवान नीलमणि के समान घनश्याम वर्ण के हैं, पीतांबर धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, गले में कौस्तुभ मणि, वक्ष में स्त्री श्रीवत्स चिन्ह धारण करते हैं, बहुत सुंदर उनके बाल हैं, करधनी है, नूपुर है। भगवान का अद्भुत रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान को देखकर ब्रह्मा जी हरे कृष्ण, भगवान को देखकर ब्रह्मा जी फिर से भगवान को स्तुति करते हैं। भगवान सामने खड़े हैं, समस्त देवता शिव जी ब्रह्मा जी खड़े हैं और भगवान के सामने खड़े खड़े ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कैसी है? अजात जन्मा स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिमने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, अजात जन्म, आप जन्म से रहित हो, आपका कभी जन्म नहीं होता है। इसकी व्याख्या हमने कल सुनी, किस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म तो होता है परंतु हमारी तरह नहीं होता है, ब्रह्मा जी का कहना यह है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, स्थिति संयमाय, हे प्रभु आपकी स्थिति भी अजात है। स्थिति माने उपस्थिति। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु इस संसार में आपकी उपस्थिति नहीं है। तब कुछ लोग कहेंगे तो संत साधु महात्मा तो कहते हैं भगवान सब जगह पर है, ये सत्य है, परंतु ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की उपस्थिति हमारी उपस्थिति के जैसी नहीं है। हमारी उपस्थिति कैसी है? हम एक समय में एक ही स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं, परंतु भगवान की उपस्थिति एक समय में अनेकों स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति अजात है प्रभु, आपकी उपस्थिति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जैसी आपकी उपस्थिति नहीं है। हम राजस्थान में नरवर गांव में है तो बस यहीं पर है। अब इसी सेकंड इसी मिनट में हम मुंबई में नहीं हो सकते हैं, परंतु भगवान एक समय में सब जगह, सब जगह। भगवान राजस्थान में भी है, नरवर में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, लंदन में है, ब्राजील में है। एक समय में सब स्थान में भगवान उपस्थित है। इसीलिए भगवान को विष्णु कहा जाता है, व्याप्त इति विष्णु, जो सभी जगह पर एक साथ एक समय में व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु एक समय में सब स्थान पर। और ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो एक समय में सब स्थान पर जो नहीं रह सकता है वो अपने भक्त की रक्षा कैसे कर सकता है। मान लो भगवान यहां राजस्थान में घूम रहे हैं और लंदन में रहने वाला भक्त परेशान हो गया तो राजस्थान को संभालेंगे कि भगवान लंदन को संभालेंगे? और परेशानी तो सबको है, लंदन में कुछ यहां परेशान कुछ वहां परेशान। तब भगवान का ये गुण है कि भगवान एक समय में सब स्थान पर रहते हैं, उनकी उपस्थिति भी अद्भुत है। यह है ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य, स्थिति अजात। हे प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जैसी नहीं है, ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, हमारी जो उपस्थिति है ये बदलती रहती है, ये स्थिति जो है हमारी बदलती रहती है। आज हम जवान हैं तो कल हम बूढ़े हो जाते हैं, ये हमारी स्थिति है। परंतु भगवान की स्थिति हमारी स्थिति जैसी नहीं है। भगवान आज जवान है तो कल भी जवान है, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अजात स्थिति, आपकी उपस्थिति संसार में नहीं है। इसका अर्थ हमारे जैसी उपस्थिति नहीं, आपकी उपस्थिति तो अद्भुत है। आपकी स्थिति बदलती नहीं है पर हमारी बदलती रहती है। भगवान जवान है तो जवान ही रहते हैं। यद्यपि आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान श्री कृष्ण सबसे पुराने, सबसे पहले, पुराने होने के बाद भी हम देखिए हमारे गांव में जो पुराना होता है, जो बुजुर्ग होता है वो कैसा दिखता है? बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, मूछ होती है, बाल पक गए हैं, सर से बाल जड़ गए हैं, टकलू हो गए हैं, ठीक से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। पुराने लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है। कृष्ण तो सबसे पुराने हैं लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं नव योव नमच नित्य नवीन, यौवन अवस्था में है। आमार माधुर्य नित्य नव नव है, भगवान नित्य नवीन रहते हैं। हम देखिए महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 100 साल की थी। अब देखिए आज का 100 साल का व्यक्ति कैसा दिखेगा? पहले तो आज कोई 100 साल जी ही नहीं सकता है, और 100 साल जी गया वो तो कैसा बूढ़ा दिखता है। परंतु आप देखिए कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण का फोटो कहीं भी देखेंगे बिल्कुल 16 साल के दिखते हैं। आपने कभी देखा कृष्ण की दाढ़ी आ गई? ऐसा कभी फोटो देखा? अरे बनाने वाले फोटो जो बनाते हैं, कुछ लोग भक्त नहीं है नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे इतना तो ज्ञान है कि कृष्ण को कभी दाढ़ी और मूछ नहीं हो सकती है, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हो सकते। संसार के साधारण लोगों को यह ज्ञान है, परंतु जो बड़े बड़े महात्मा हो गए उसको यह ज्ञान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी स्थिति हमसे बिल्कुल अलग है। हम बदलते रहते हैं परंतु आप बदलते नहीं हैं। ये है स्थिति, अजात स्थिति। भगवान का जन्म भी अजात है, भगवान की स्थिति भी अजात है, मतलब हमसे परे है। तत्पश्चात कहते हैं संयमाय अजात। संयम का अर्थ होता है मृत्यु। हे प्रभु, आपकी मृत्यु भी नहीं है। अजात जन्म स्थिति संयमाय, संयमाय अजात। हे प्रभु, आपकी मृत्यु नहीं है, बात भी सत्य है। भगवान की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। भगवान मृत्यु से परे है। अजात संयमाय, भगवान की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। और जिसकी मृत्यु न हो उसे तो भगवान कहते हैं। जो मर जाता है वो भगवान कैसे हो सकता है? संसार के कई लोग कहते हैं हाँ कृष्ण भगवान थे, भूतकाल लगा देते हैं। हम भी मानते हैं आपके कृष्ण भगवान, परंतु वो थे, आज नहीं है। हम बोलते क्या हुआ, बोले वो तो मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में रहे, फिर द्वारका में गए, और द्वारका में 128 साल के बाद जरा नाम के शिकारी ने एक तीर मारा, पांव में लगा, कृष्ण मर गए। मूर्ख कहीं के, जरा नाम के शिकारी के एक तीर से कृष्ण मर सकते हैं? आप केवल इतना देखिए कि वह कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चला रहे थे, और उस महाभारत के युद्ध में उस रथ के ऊपर जो बैठता था उसके पहले रथ चलाने वाला मरता था। सामने से जो बाण आते थे वो बाण पहले सारथी के ऊपर और फिर रथी के ऊपर, परंतु एक भी बाण कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और एक शिकारी का बाण कृष्ण को मार सकता है? यह बात छोड़िए, गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं है। म्रियतेवा कदाचित, आत्मा कभी भी नहीं मर सकती है। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुत। शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, और पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है। अब आप विचार कीजिए, जब आत्मा को कोई नहीं मार सकता है तो परमात्मा को कौन मार सकता है? है? जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है तो परम परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को वो शिकारी कैसे मार सकता है? कभी नहीं, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है। और ये बात इस जगत के वरिष्ठ भक्त, इस संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वास्तव में हम सब ब्रह्मा जी की छत्र छाया में बैठे हैं। यहां से बहुत निकट पुष्कर क्षेत्र, जहां पर ब्रह्मा जी का अद्भुत मंदिर है, और बहुत सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मा जी के क्षेत्र में बैठकर ब्रह्मा जी की स्तुति हम बोल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को जो स्तुति हुई है वह स्तुति, इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं कि हे प्रभु, आपका जन्म नहीं, आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी मृत्यु नहीं है, आप मृत्यु से बिल्कुल परे हो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं अजात जन्म स्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण। हे प्रभु, आप निर्गुण हो, अगुण हो। ब्रह्मा जी भगवान को निर्गुण कहते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान को निर्गुण कहते हैं तो संसार के लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान में गुण ही नहीं है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि भगवान गुण बिना गुण के है, इस बात को हम समझना चाहिए। भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी बहुत संक्षिप्त में कह दिए, परंतु सुखदेव गोस्वामी और ब्रह्मा जी की बात को समझने के लिए आचार्यों का सहारा लेना होगा। इस भागवत को समझने वाले, पढ़कर इस भागवत की व्याख्या करने वाले टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को निर्गुण कहते हैं, तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण का अर्थ कहते हैं अगुणाय हेय गुण वर्जिताय। अगुण का अर्थ होता है, निर्गुण का अर्थ होता है हेय गुण वर्जिताय, जिसमें दुर्गुण नहीं है उसे निर्गुण कहते हैं। जिसमें बुरे गुण न हो, भगवान में दुर्गुण नहीं है, हेय गुण नहीं है, इसलिए उसे निर्गुण कहते हैं। भगवान में मात्र गुण ही गुण है, दुर्गुण नहीं है। तब कुछ लोग कहते हैं, आप ऐसा कैसे कहते हो, भगवान में दुर्गुण तो है, ये कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़कर तो कायर लोग भागते हैं, तो क्या ये रण छोड़कर भागना कृष्ण का गुण है? ये तो दुर्गुण है। परंतु देखिए, भगवान श्री कृष्ण जरासंघ के साथ युद्ध करते करते रण छोड़कर भागे, तो रण छोड़कर क्यों भागे, इस बात को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी मथुरा में रहते थे, और जरासंध हजारों की, लाखों की मात्रा में लोगों को एकत्रित करता था, और कृष्ण के साथ युद्ध करने में करने के लिए मथुरा में आता था। कृष्ण और बलदेव जी जरासंध की सेना के साथ युद्ध करते थे, सेना के सभी लोगों को मार देते थे और जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। जरासंध फिर से जाता, एक दो साल में फिर से अपना ग्रुप बनाता, संसार में जरासंध जैसे जितने लोग हैं उसको एकत्रित करता और फिर से कृष्ण के साथ युद्ध करता। कृष्ण मथुरा में बैठे बैठे युद्ध करते, जरासंध की सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते थे। दाऊ जी ने पूछा, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये जरासंध को मार डालो। तब कृष्ण ने इतना ही कहा कि देखो, मैं इस संसार में आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये दुष्कृति लोग असुरों का विनाश करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो भैया मैं इस दुनिया में कहां कहां जाकर असुरों को ढूंढूंगा। अच्छा है ये जरासंघ ढूंढ ढूंढ कर लाता है हमारे मथुरा में और हम बैठे बैठे मारते हैं। भगवान कृष्ण जरासंघ को छोड़ देते और पूरी दुनिया में असुरों को ढूंढ ढूंढ कर लाता और भगवान मारते रहते। घर बैठे काम हो रहा है, घर बैठे सफाया हो रहा है। जरासंघ इस बात को समझ गया और जरासंघ ने सोचा कि ये कृष्ण के साथ युद्ध करने में मैं हार जाता हूं, अब जीतना है, क्या करूं क्या करूं। तब जरासंघ को पता चला कि कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के देव है, नमो ब्राह्मण देवाय। और दूसरी बार एक श्लोक में पुनरुक्ति, दूसरी बार ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। एक बार कह दिया नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के देव है, और फिर कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों का हित करने वाले जो भी हो, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, भगवान के चरणों से शूद्र, जंगा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य, भुजा से क्षत्रिय, और भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। और भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, पठन पाठन यजन याजन, और दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देता है। ऐसे ब्राह्मणों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पान मावा सिगरेट तंबाकू और गांजा पीने वाले से भगवान प्रेम नहीं करते हैं, शुद्ध ब्राह्मण से प्रेम करते हैं। जो मात्र कहने के लिए ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों से भगवान प्रेम नहीं करते हैं। जरासंध को पता चला कि कृष्ण ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। एक दिन जरासंध ने कई सारे ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, और उसमें भी लड्डू बनाया जाए तब तो बात ही क्या। ब्राह्मणों को बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, दान दक्षिणा हुई, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और जरासंध को आशीर्वाद देने लगे। जरासंध ने कहा, रुको रुको, आशीर्वाद मैं जो चाहता हूं वह मुझे दो। बोले, क्या चाहिए? कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि अब की बार मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं और उस कृष्ण के साथ युद्ध करने में मैं विजयी हो जाऊं, और देखो यदि मैं हार गया तो ये तलवार देख रहे हो ना, एक एक ब्राह्मण को पकड़ पकड़ कर सिर काट दूंगा। धमकी दे दी जरासंध ने। अब बेचारे ब्राह्मण मरता क्या नहीं करता, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया, आप ज्यादा जीवो, विजयी भव, क्योंकि मरने वाले को कुछ तो करना है बचने के लिए। ब्राह्मणों ने जरासंध को आशीर्वाद दिया और ये ब्राह्मण दूसरे दिन दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आए। प्रभु, हमने उसे आशीर्वाद दे दिया है, परंतु हम जानते हैं आप साक्षात ईश्वर हो, भगवान हो, आप उसे मार डालोगे, हरा दोगे, परंतु प्रभु यदि आप उसे हरा दोगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब की बार जो युद्ध होगा कृपया करके आप उसमें हार जाइए। और भगवान तो ब्राह्मणों के प्रिय है ही, ब्राह्मणों का हित करने के लिए तो भगवान का जन्म हुआ है। तो अब की बार जरासंध के साथ युद्ध हुआ और ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उस रणभूमि को छोड़कर भागे, और भागकर मथुरा से द्वारका नगरी में आए और द्वारिका में समुद्र के बीचों बीच अपना महल बनाया। इस प्रकार कुछ लोग, मैं ये कह रहा था, ब्रह्मा जी भगवान को निर्गुण कहते हैं, तो शिपा छेदर स्वामी कहते हैं निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें दुर्गुण न हो। निर्गुण का एक अर्थ ये है, तो भगवान श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं रण छोड़कर भागे, परंतु रण छोड़ने का कारण अपने भक्त के ऊपर कृपा है। ये तो कुछ लोग कृष्ण के ऊपर दोष लगाते हैं, ठीक है चलो ये तो ठीक है, परंतु झूठ बहुत बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो गुणवान हो, आप में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो फिर कुछ लोग का तर्क है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, मट्टी खाई थी परंतु यशोदा को कहते हैं नहीं खाई। प्रसिद्ध घटना आप सब लोग जानते हैं, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खाए, बलदेव जी बड़े भाई हैं, तुरंत दौड़कर यशोदा के पास गए, मैया मैया कान्हा ने माटी खाई है, जल्दी आप उसे निवृत्त करो नहीं तो पेट में रोग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पास डांटने के लिए आ रही है। कृष्ण ने दूर से देखा कि मैया आ रही है, तुरंत कृष्ण लार बनाकर उस मट्टी को निगलने का प्रयास, परंतु छोटा सा मुख कैसे उसे निगल जाए। मैया आई और कृष्ण को कहा, कृष्ण क्या तूने मिट्टी खाई है? तो मुंह में मिट्टी थी, बोल नहीं सकते थे, कहा हूं। मैया ने कहा, मैं पूछ रही हूं तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने कहा, नाहम भक्षितवान अंब, हे अंब, हे मां, अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा कहती, तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? तेरा भाई दाऊ कह रहा है, ये बलदेव झूठ बोल रहा है। कृष्ण ने कहा, सर्वे मिथ्याभि संशीन, मैया ये सब लोग झूठे हैं। अच्छा, ये सब झूठे हैं और तू ही एक हरिश्चंद्र की औलाद बनकर जन्म लिया है। यदि तूने मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल, यदि सत्य गिरह तरी ब्याह देखी, अपना मुंह खोल कर दिखा। तब कृष्ण अपना मुख खोलते हैं और यशोदा कृष्ण के मुख में दर्शन करती हैं, है? अद्भुत दर्शन, एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, पृथ्वी में एशिया, एशिया में भारत, भारत में मथुरा, मथुरा में वृंदावन में गोकुल, और गोकुल में यशोदा और कृष्ण का दर्शन उस मुख में किया। जो यशोदा छड़ी लेकर कृष्ण को दाटने के लिए आई थी, कृष्ण के मुख को देखकर मूर्छित होकर गिर गई, दंड देने वाला मूर्छित हो गया। इतनी कथा तो सब लोग जानते हैं, परंतु कथा का तत्व जो है ये हम नहीं जानते हैं। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। वेदव्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। और केवल वेदव्यास ही नहीं, ये ब्रह्मा शिव समेत समस्त देवता जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे, तब गर्भस्थ स्तुति करते समय सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य नेत्रम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, एक श्लोक में 9 बार भगवान कृष्ण को सत्य कहा है। हे प्रभु, आपका चलना सत्य, बोलना सत्य, आपकी प्रतिज्ञा सत्य, आप सत्य के भी सत्य। और महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं, सत्य कृष्ण प्रतिष्ठित, कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित, कृष्ण ही सत्य में है और सत्य ही कृष्ण में है। इसलिए सत्य यदि कोई है तो वह है एकमात्र कृष्ण। कृष्ण सत्य है, कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं। तब प्रश्न होता है, मिट्टी खाई थी तो कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये तो झूठ बोले, इस बात को कैसे समझा जाए? तब देखिए, कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, इसमें कोई दोराय नहीं है। और मैया ने पूछा, कृष्ण क्या तूने मिट्टी खाई? तो कृष्ण ना कह रहे हैं तो कहने का भाव यह है कि मैया मैंने अकेले ने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा ने क्या पूछा था? कृष्ण तूने मिट्टी खाई? तब कृष्ण ने कहा, मैया मैंने अकेले ने नहीं, मुझ में रहने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत जीवों ने साथ में मिलकर मिट्टी खाई, मैंने अकेले ने मिट्टी नहीं खाई। इसे कहते हैं सत्य। बताइए, आज ऐसे सत्य का निरूपण करने वाला कौन है? चंद पैसों की लालसा में व्यासपीठ के ऊपर बैठता है और भागवत को बेचने चलता है। कथा सुननी चाहिए ऐसे भक्तों से जो निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भाव से भगवान और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कथा करें। संसार में बहुत दुख होता है, कुछ पैसों के लोभ में भागवत को बेचने के लिए बैठ जाते हैं और बड़े बड़े कथाकारों में उनका नाम आता है। ऐसे लोगों से यदि कथा सुनते हैं तो कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। आप इतना ही समझिए कि कथा करने वाला ये धन की आसक्ति से मुक्त नहीं है, लोगों को दुनिया की आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाएगा? शुद्ध भावना से यदि कोई कथा करता है तब हृदय पवित्र होता है, सत्य का निरूपण। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो कुछ लोग दोष देखते हैं तो उस दोष को मैं क्लियर कर रहा हूं। हमारे प्रभु में कुछ लोग दोष देखते हैं, प्रभु में दोष नहीं है, दोष हमारी आंखों में है। पीला चश्मा पहना है तो दुनिया पीली दिखेगी, चश्मा निकालो, अज्ञान से दूर हो जाओ तब पता चलेगा कृष्ण दोष रहित है। तब कुछ लोग और कृष्ण के ऊपर दोषारोपण करते हैं, 16108 के साथ विवाह क्यों किया है? कुछ लोग कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं, तो क्या बस यही धर्म है 16108 के साथ विवाह करना? कुछ लोग दोषारोपण करते हैं, परंतु देखना चाहिए भगवान ने 16108 विवाह क्यों किया। सबसे पहले कृष्ण ने 16108 विवाह किया तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अरे वो 16108 के साथ करे, 16,108 के साथ करे, वे 16,108 के साथ विवाह करे, फिर भी सभी पत्नी को अच्छी तरह से रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। और यहां एक भारी पड़ जाती है, उनको हजार सोए हमको पहाड़ भारी। उनके पास हजार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लक्ष्मी के नाथ है, और यहां एक पत्नी को रखने में फैन निकल जाते हैं, व्यक्ति रात दिन मेहनत करके थक जाता है। तो हम लोग जब भगवान को देखते हैं ना तो हमारी दृष्टि से देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक को नहीं रख पाते हैं कि वो 16108 को कैसे रखते हैं। परंतु भगवान का ऐश्वर्य अद्भुत है, भगवान हमारी तरह फक्कड़ बाबा नहीं है, अनंत लक्ष्मियों के नाथ है, सोने की द्वारका में रहते हैं, और 16108 रानियों के रहने के लिए अलग अलग कमरे, और वह दीवार चिंतामणि और पारसमणि से बनी हुई थी। भगवान की पत्नियों को कभी गैस और चूल्हा शुरू नहीं करना पड़ता था, चिंतन करने मात्र से प्रकट हो जाता था कभी, और कभी भगवान को पूछना भी बोलना भी नहीं पड़ता था कि मेरे लिए आज एक साड़ी लेकर आना, नहीं, वो पत्नी विचार करती थी साड़ी आ जाए तो सामने प्रकट हो जाती थी, ऐसा ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी भगवान ने इतना विवाह क्यों किया? कारण यही है कि 16,100 राजकुमार, क्षमा कीजिए, बड़े बड़े राजाओं की राजकन्या जो विवाह के योग्य हो चुकी थी, ऐसी कन्या का अपहरण कर लिया एक दुष्ट ने, और अपहरण करते करते 16,100 कन्या को अपने जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया, बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया। ये 16,100 कन्याओं ने जेल में बैठे बैठे एक पत्र लिखा कृष्ण को, प्रभु ये असुर ने हमको अपने जेल में अपने कैद में बांध कर रखा है, और आप हमें छुड़ाने में समर्थ हो, कृपया करके हमें यहां से छुड़ाओ। उस कन्याओं के ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण आए, उस असुर का वध किए और 16,100 कन्या को उसके कैद से मुक्त किए, कहा अब आप स्वतंत्र हो, आप अपने अपने घर वापस चली जाओ। परंतु वह कन्या दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण से कहती है, कृष्ण अब यदि हम घर पे चली भी जाएगी तो हमें कोई रखेगा नहीं, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। भक्तों, सतयुग त्रेता या द्वापर में स्त्री यदि एक रात भी कहीं बाहर रुक जाती थी तो उसका पति उसे स्वीकार नहीं करता था। इसी के कारण तो भगवान ने सीता को त्याग दिया धोबी के कहने पर। ये 16,100 कन्याओं ने कृष्ण को कहा कि प्रभु कृपया करके आप हमें स्वीकार करो, हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तब कृष्ण का हृदय द्रवित हुआ और कृपा करके उन कन्याओं के ऊपर कृष्ण ने 16,100 कन्या के साथ विवाह किया। ये है भगवान का गुण। भगवान सभी गुणों से विभूषित है, किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अगुणाय। अगुणाय का एक अर्थ गोस्वामी गिरधर लाल करते हैं, अगुणाय इति प्राकृत सत्व आदि गुण वश्य इति अर्थ। भगवान को ब्रह्मा जी अगुण कह रहे हैं, निर्गुण कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इस संसार के सभी गुणों से परे हैं। संसार में माया के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री विष्णु ये तीनों गुणों से परे हैं। ये तीनों गुण भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। यद्यपि ये तीनों गुण, ये माया शक्ति भगवान से प्रकट होती है, भगवान की शक्ति होने के बाद भी वह माया व गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म दिव्यम, दिव्य का अर्थ होता है आकाश। इस आकाश के नीचे अर्थात इस भौतिक संसार में जो तीन गुण है, सत्व रजस तमस, भगवान श्री विष्णु ये तीनों गुणों से परे हैं, मुक्त है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को निर्गुण कह रहे हैं, निर्गुण कहते हैं। अब देखिए इस संसार का गुण क्या है, यदि कहीं पर आग लगी है उसमें हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, परंतु एक बार वृंदावन के जंगल में बहुत बड़ी आग लगी, कृष्ण गए और जंगल की दावा अग्नि को कृष्ण पी गए। यद्यपि संसार का अग्नि का गुण है, जैसे ही कोई उसे स्पर्श करे उसको जला देती है, परंतु भगवान दावा अग्नि को भी पी गए। इसका अर्थ है कि भगवान इस संसार के गुणों से परे हैं, संसार के गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। और इसके साथ ब्रह्मा जी कहते हैं अजात जन्म स्थिति संय माय गुणाय निर्वाण सुख अर्णवाय। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र है, सुख अर्णवाय। भगवान श्री कृष्ण सुख प्रदान करने वाले हैं। बोले इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति प्राप्त कर लेना, यह है संसार का सबसे बड़ा सुख। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति आत्यंतिक सुखी नहीं हो सकता है। आत्यंतिक माने पूरा पूरा सुखी नहीं हो सकता। संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, परंतु वह सुख जो है आत्यंतिक नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं है एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार का जो सुख है आदि अंत, आदि और अंत वाला है, बहुत कम समय के लिए सुख मिलता है। और यदि बुद्धि की बात करूं भक्तों, तो देखा जाए तो इस संसार में सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, तो फिर हम सुख का अनुभव कैसे कर लेते हैं? सुख का अनुभव ऐसे होता है कि माया के द्वारा निरंतर हमको इस संसार में दुख मिल रहा है, और कुछ क्षण माया दुख देना बंद कर देती है तो हमें लगता है कि हमें बहुत सुख मिल गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राज दंड येन येन नदी ते चुबाए। पहले के राजा महाराजा अपराधी को दंड देते थे, कैसा दंड होता था? कहते हैं कि बीच नदी में अपराधी को लेकर जाते थे, उस अपराधी का बाल पकड़कर नदी में डुबा देते थे। वह नदी में तड़पता था सांस लेने के लिए, परंतु बाहर नहीं निकालते थे, छटपटाता था, और जब अंतिम क्षण बच जाती थी तब उसे बाहर निकाला जाता था, तब वह चैन की सांस लेता। दो तीन मिनट सांस लेने के बाद फिर से उसे नदी में डुबाया जाता था, फिर से वह तड़पता था। जब जीवन की अंतिम क्षण बच जाती तब बाहर निकलता। अब बताइए कि वह व्यक्ति बाहर निकल रहा है और सांस ले रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, क्या वह सुख है? राजा के द्वारा उसे दंड मिल रहा है, राजा दंडित कर रहे हैं, उस दंड की अवस्था में कुछ क्षण दंड देना बंद कर दिया तो वह अपराधी सोचता है मुझे सुख मिल गया। वैसे ही हमारे जीवन में माया के द्वारा दुख मिल रहा है, माया दुख देना बंद करती है तो हम उसे सुख समझ बैठते हैं। वह सुख नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। सब लोग दुखी हैं, और वास्तविक सुख क्या है? कहते हैं सुख निर्वाण। वास्तविक सुख निर्वाण अर्थात मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्ति। कभी कभी लोग मुक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते हैं। भागवत और भगवत गीता में वेद व्यास जी और भगवान कृष्ण बिल्कुल क्लियर कहते हैं मुक्ति का अर्थ। ये मुक्ति समझने के लिए बंधन को समझना होगा। मुक्ति का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, तो फिर बंधन क्या है? आप कहोगे हम तो मुक्त हैं, अब मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्त तो है ना, तो हाथ में बेड़ी है ना कड़ी है, कुछ नहीं। परंतु भक्तों ये दिख रहा है कि हम मुक्त हैं, परंतु हम सब लोग बंधे हुए हैं, हम सब के ऊपर बंधन लगा है, और एक नहीं अनेकों बंधन। आप गिनते रहिए कितने बंधन हैं हमारे ऊपर। हम सब आत्मा है, वी आर नॉट अ बॉडी वी आर अ सोल। हम सब ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और इस आत्मा के ऊपर अनेकों बंधन। आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, पंच महाभूत का बंधन, ये शरीर का बंधन, शरीर मिलता है तो माता का बंधन, पिता का बंधन, गुरु का बंधन, समाज का बंधन, पत्नी का बंधन, एक से एक बंधन। लगता नहीं है ये बंधन, परंतु आप देखिए कितने बड़े बंधन। व्यक्ति सोचता है कि ये पत्नी के द्वारा जो दुख मिल रहा है, जीवन का सबसे ज्यादा दुख हमारे अपनों से मिलता है। हमारी पत्नी और बच्चों से जितना दुख मिलता है उतना दुख पाकिस्तान वालों से नहीं मिलता है। ये मैंने ही चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, शरीरे अरि प्रहृति स्वजन हृदयस्तुवा। पाकिस्तान वाले मान लो दुख देते हैं तो क्या करते हैं? गोली मारते हैं, हॉस्पिटल में जाकर ठीक हो जाते हैं। परंतु स्वजनों के द्वारा जो दुख मिलता है वो तो जीवन भर भर तक व्यक्ति तड़पता रहता है। जानता है व्यक्ति पत्नी से दुख मिलता है, पुत्र से मिलता है, और उसके लिए रात दिन मेहनत है। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए सारी उम्र बिता देता है, रात दिन गधे की तरह मेहनत करता है, लेकिन पत्नी एक बार भी नहीं कहती है बस प्रभु अब आपने बहुत मेहनत कर ली अब आप आराम कीजिए, नहीं। रात दिन मेहनत करता है फिर भी पत्नी यही कहती तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। बच्चे भी यही कहते हैं, और व्यक्ति सुबह से निकल जाता है, रात दिन मेहनत करता है, और शाम को जब अपना काम समाप्त हो जाता है तो फिर उसी घर में वापस लौटता है। अब वो जानता है कि मैं घर में जा रहा हूं, वहां दुख मिलेंगे और वहीं से ज्यादा दुख मिलेंगे, परंतु पत्नी की जो रस्सी है वह ऐसी रस्सी छोड़ती है और खींचती है कि वह पति उनके पत्नी के पास ही वापस लौटता है, जा नहीं सकता है। बंधन है, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, समाज का बंधन। कभी कभी हम लोग कहते हैं आप भक्ति कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, तो कहते हैं हम कृष्ण का नाम लेने के लिए तैयार है, परंतु समाज वाले क्या कहेंगे, समाज से डरते हैं। भगवान का नाम लेने में समाज से डरते हो, ये समाज क्या दे सकता है बताइए, कुछ नहीं। आप 1000 अच्छे कार्य कीजिए, यदि गलती से 1 बुरा कार्य हो गया, 1000 अच्छे कार्य किए हैं समाज ये नहीं देखेगा, बस बुरा कार्य किया है उसी को पकड़कर बैठ जाएगा। ये है समाज। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं ये समाज कैसा है, आप यदि समाज से जा रहे हो, रास्ते से निकल रहे हो, और यदि आपकी दृष्टि सीधी है तो समाज वाले कहेंगे देखो कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, अपनी मां बहन जैसी स्त्रियों के ऊपर नजर डाल रहा है। अब समाज के लोगों की इस बात को सुनकर आप अपनी दृष्टि नीचे रखकर चलोगे तो समाज वाले कहेंगे लगता है कुछ गलत काम किया है, कुछ गलत काम किया है इसलिए दृष्टि नीचे रखकर चल रहा है। समाज वालों की यह बात सुनकर यदि आप दृष्टि ऊपर रखकर चलोगे तो वही समाज वाले कहेंगे देखो अहंकार, कितना अभिमान है इसको कि दृष्टि नीचे नहीं कर रहा है, सीधा भी दृष्टि नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर नहीं। समाज के लोगों की बात को सुनकर आप अपनी आंख को फोड़ दोगे तो वही समाज वाले कहेंगे अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ये है समाज। समाज क्या करेगा, एक दिन हाथी के ऊपर बिठाकर आपकी प्रशंसा, दूसरे दिन गधे के ऊपर बिठाकर गाली देगा ये समाज। और ऐसे समाज के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते हो, ऐसे समाज के लिए भगवान को ठुकरा रहे हो। अरे जो समाज भगवान की भक्ति में बाधा बनते हैं उस समाज को ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि ये समाज क्यों बना है, हम समाज में क्यों रहते हैं। समाज इसलिए दिया जाता है ताकि भगवान की भक्ति करने में अनुकूलता मिले। जब समाज ही भक्ति में बाधा बन जाता है तब समाज को छोड़ना ही सर्वोच्च धर्म है। ये मैं नहीं कहता हूं, आप लोग कहेंगे ये मुंबई से आए हैं और समाज को छुड़ाने के लिए बैठ गए हैं। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत जी ननिहाल गए थे और कैकेयी ने वनवास दे दिया राम को। जब आए पता चला, वशिष्ठ जी ने कहा भरत राम तो चले गए हैं, आप राम की गादी के ऊपर बैठो और अवध का राज करो। भरत जी ना कहते थे, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। कैकेयी ने कहा, प्रजा ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, परंतु भरत जी ने इतना ही कहा, मैं सत्य कहता हूं, मुही राज हटू दई हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। आप हट करके यदि मुझे राजा बना भी दोगे तो मैं सत्य कहता हूं जिस दिन मैं राजा बनूंगा, जिस दिन अवध की राज सिंहासन पर बैठूंगा उस दिन यह रसा यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि अवध के राजा एकमात्र राम ही हो सकते हैं। और उस समय ऐलान किया भरत जी ने कि मैं जा रहा हूं मेरे भाई राम के पास, और यदि आपको भी सुखी होना है तो चलो मेरे साथ। उस दिन ये भरत भगवान श्री रामचंद्र के पास जाने के लिए निकले। अवध की प्रजा भरत के साथ हैं, भगवान को मिलने के लिए सब लोग जा रहे हैं। भरत जी के हृदय में भाव है, मैं राम के पास जा रहा हूं। रोते रोते जा रहे हैं, प्रजा ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, अब तो कुछ ही क्षण में राम के पास पहुंच जाएंगे, इतना रोना क्यों आ रहा है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी ने इतना ही कहा, ये सत्य है कि मैं राम से मिलने जा रहा हूं। राम से मिलने में जो रास्ता है ना, उस रास्ते पर हृदय रखकर चलना चाहिए, परंतु मैं मेरा पांव रखकर चल रहा हूं, ये मुझे दुख हो रहा है। दुख है जिस राम को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पर तो हृदय रखना चाहिए, परंतु उस रास्ते पर मैं मेरा कठोर पांव रख रहा हूं, इस बात का मुझे दुख है। भरत जी अयोध्या की प्रजा को लेकर जा रहे हैं, परंतु रामायण में वर्णन है, कुछ लोगों ने कहा भरत जी हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बच्चों की एग्जाम है ना, परीक्षा चल रही है, पता नहीं कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके साथ आएंगे तो ऑफिस में कौन जाएगा, खेत में काम कौन करेगा। कुछ लोगों ने कहा भरत जी हम आपके साथ चलेंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा। तो भरत जी ने कहा अरे जर उस संपत्ति सदन सुद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहज सहाय। जो संपत्ति, जो धन, जो पुत्र परिवार, जो घर और जो खेत भगवान को मिलने के लिए बाधा बन रहे हैं, तो उस खेत को, उस घर को, उस धन को जला देना चाहिए, क्योंकि ये खेत, धन, परिवार, स्वजन क्यों मिले हैं, भगवान को मिलने के लिए, और वही यदि भगवान को मिलने में बाधा बन रहे हैं तो जलाकर राख कर दो उसे। जला देने का अर्थ है त्याग देना चाहिए, और हमारे सामने बैठे हैं ना त्याग कर, यह है आदर्श। एक बार हमारे मारवाड़ की परम भक्ता मीराबाई ने, जब उनको उनके अपने ही स्वजन जब भक्ति में बाधा देने लगे, तब मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि प्रभु भगवान की भक्ति में बहुत बाधा हो रही है, ठीक से भजन नहीं कर पा रही हूं, कहो मुझे क्या करना चाहिए। एक और सांसारिक धर्म है, एक और मेरे पति, सास, ससुर, देवर, और एक और मेरे गिरधर गोपाल। यदि ये सांसारिक धर्म का निर्वाह करती हूं तो गिरधर गोपाल से दूर हो जाती हूं, और यदि गिरधर गोपाल की भक्ति करती हूं तो ये संसार के लोग मुझे ताना देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर बहुत सुंदर लिखा, जाके प्रिय न राम वे देही। हे मीराबाई, जाके प्रिय न राम वैदेही, इस संसार में कोई व्यक्ति राम और वैदेही जगत जननी माता सीता से प्रेम नहीं करते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तजिए ताही कोटि वेरी सम जद भी परम सनेह। जो राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, कैसे, अपने शत्रु के समान। बहुत सुंदर पद तुलसीदास जी ने लिखा है, आइए हम गाते हैं आस्वादन। जाके प्रिय न राम वे देही, जाके प्रिय न राम वे देही, जाके प्रिय न राम ताही कोटि वरी सम तजिए ताही। को तुरंत त्याग देना चाहिए। तब मीराबाई ने दूसरा पत्र लिखा, मानो कि प्रभु यदि मैं संसार के लोगों को त्याग दूंगी, यदि मेरे पति को स्वजन को त्याग दूंगी तो मुझे दोष तो नहीं लगेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं
तजियो पीता प्रह्लाद विभीषण, तजियो पीता प्रह्लाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे मेरा भाई, भगवान की प्राप्ति में बाधा बन रहे थे हिरणाकश्यपु, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता हिरणाकश्यपु को त्याग दिया। भगवान के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। भगवान की भक्ति करने के लिए भरत ने अपनी मां को त्याग दिया और बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति आज भी इतिहास में अमर हो गई, मंगलकारी हो गए।
सजियो पीता प्रह्लाद विभीषण, सजियो पीता प्रह्लाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु कंत ब्रज नारी, बलि गुरुता बलि गुरुता जो कंत ब्रज नारी, बलि गुरुता कंत ब्रज नारी, भये मुदय मंगलकारी, राम वे जाके प्रियन राम वे दे जाके राम वे दे, नाते ने राम के अंजन कहा आक जे ही भूते, अंजन कहा आक जे ही भूते, बहुत तक कहो
त्याग देना चाहिए बंधन को। गोस्वामी जी ने कहा छोड़ दो उस बंधन को। मैं यह कह रहा था, इस संसार में सब लोग बंधे हुए हैं, कुछ लोग समाज में बंधे हैं। समाज बहुत अच्छी चीज है, परंतु जब तक वह भक्ति में सहायता करे तब तक। समाज का बंधन, देश का बंधन, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का, मात्सर्य का, ईर्ष्या का, जन्म का, मृत्यु का, जरा का, व्याधि का, एक से एक बंधन इस संसार के जीव में लगे हैं। इस बंधनों से छूट जाना ही मुक्ति है। ये सब बंधन से छूट कर हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु मुक्ति भी बहुत प्रकार की है, सायुज्य, सामुप्य, सालोक्य, साष्टी, अनेकों प्रकार की मुक्ति है। परंतु भगवान कपिल देव भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं कि हे मां, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, अनेक प्रकार की मुक्ति, परंतु मेरे भक्त को यदि मैं मुक्ति भी दे दूं, दीयमानम न गृणंती, मेरे भक्त इस मुक्ति को ठुकरा देते हैं। भक्त मुक्ति नहीं चाहते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। और भक्त लोग ये सायुज्य मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना। कुछ लोग साधना के द्वारा, योग के द्वारा ब्रह्म में लीन होने की साधना करते हैं, इसके द्वारा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सायुज्य के द्वारा व्यक्ति, जीव संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, मात्र मुक्त होता है। परंतु मुक्ति से भी एक उच्च अवस्था है जिसे प्रेम कहा जाता है। मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मुक्ति। परंतु हमारे वेदों में पंचम पुरुषार्थ, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचवा पुरुषार्थ जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है वो है प्रेम। मुक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, बहुत शास्त्र की बहुत गहरी बात मैं आपको करने जा रहा हूं। मुक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? मुक्ति का अर्थ होता है संसार के दुखों से मुक्त जब व्यक्ति हो जाता है तब उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। परंतु प्रेम में क्या होता है? प्रेम में व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके साथ साथ उसे सुख भी मिलता है। दो चीज आपके पास है, एक है मुक्ति जिससे आप दुखों से मुक्त हो सकते हो, और दूसरा है प्रेम जिससे आप दुख से भी मुक्त हो सकते हो और भगवान के साथ प्रेम करने में सुख की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। अब मैं आपको दो विकल्प दूं कि आपको ये दुखों से मुक्त होना ही चाहते हो या दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करना चाहते हो, क्या इच्छा है? तो प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति दुखों से मुक्त होगा और दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करना चाहेगा, प्रेम प्राप्त करना चाहेगा। क्योंकि प्रेम करना ये आत्मा का स्वभाव है। जब तक आत्मा प्रेम नहीं करती है, और वह भी परमात्मा से प्रेम नहीं करेगी, तब तक वह सुखी नहीं हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मुक्ति नहीं मांगते हैं, भगवान से प्रेम मांगते हैं। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वे भगवान के धाम में जाते हैं। जो योग करते हैं, अन्य साधन करते हैं, उसके द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म में लीन होने वाले क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ताही गतिर दुखम देहवाब्धि अवाप्यते। ऐसा व्यक्ति जीवन भर उस साधना में क्लेश दुख प्राप्त करेगा और जीवन भर वह दुख प्राप्त करके वह साधन करके प्राप्त क्या होगा? मुक्ति, ब्रह्म में लीन होगा, ब्रह्म में लीन होकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कृष्ण, भगवान कपिल देव जो सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए आए थे, अपनी माता देवहूति से कहते हैं, दीयमानम न गृणन्ति, मेरे भक्त ये मुक्ति नहीं चाहते हैं, मेरा धाम चाहते हैं, मुझसे प्रेम करना चाहते हैं। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले जाना, इसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं। अब मैं थोड़ी उच्च व्याख्या करने जा रहा हूं। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ सायुज्य समझते हैं, ब्रह्म में लीन। मुक्ति का वास्तविक अर्थ भागवत में देते हैं कि हम आत्मा है और आत्मा के ऊपर कई सारे अज्ञान होने के कारण अपने आप को इसका स्वामी, इसका पति, इसकी मां समझ बैठे हैं, अपनी गलत पहचान हम बना लिए हैं। ये आत्मा का स्वरूप है भगवान का दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति, और यह जीव का भगवान के साथ कुछ संबंध है। हम सब का भगवान के साथ कुछ संबंध है, परंतु अज्ञान के कारण हम उस संबंध को भूल गए हैं। परंतु भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, उस संबंध को पुनः फिर से याद कर लेना और फिर से वह संबंध स्थापित कर देना और वह संबंध स्थापित करके भगवान के धाम में जाकर उस संबंध का आदान प्रदान करना, यही है वास्तविक मुक्ति। आप कहेंगे प्रमाण, भागवत का प्रमाण, मुक्ति हितवा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। यदि हमारा भगवान के साथ वात्सल्य भाव का संबंध है तो उस भाव में स्थित हो जाना, यह है मुक्ति। यदि हम भगवान के सखा है तो भगवान के धाम में भगवान का सखा बन जाना, यह है वास्तविक मुक्ति, यह है वास्तविक। और इसी का उपदेश देने के लिए भगवान को यहां आना पड़ा। भगवान कहते हैं, अरे ब्रह्म में लीन मत हो, मेरी भक्ति करो, मुझे कोई पुत्र बनाओ, मुझे कोई सखा बनाओ। माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अति दिन ज्ञाने करे लालन पालन। यदि कोई मां बनकर मेरा लालन पालन करता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। सखा शुद्ध ज्ञान करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। कोई सखा बनकर मेरे साथ खेलता है, उसे आनंद लेता हूं। प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति हते हरे मोर मन। यदि कोई मेरी प्रिया बनकर मेरे से प्रेम करती और मुझसे रूठ जाती है, तो उस रूठी हुई प्रिया को मनाने में मुझे उतना आनंद आता है, उतना आनंद आता है, उतना आनंद मुझे है, ये ब्रह्म स्तुति में नहीं आता है, जय जगदीश रे में उतना आनंद। देखिए शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। हमारे ब्रज में तो कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रज वृंदावन के सखा गोप ग्वाल कृष्ण को गाली देते हैं, सारे काले कलूटे। भगवान कहते हैं कि इसकी गाली में मुझे जितना उतना आनंद आता है, जितना आनंद आता है, उतना जय जगदीश हरे में नहीं आता है। गाते हैं जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे। तो आपने अपना एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया है भगवान को, कि संकट को दूर करें हैं। भक्त लोग भगवान से कभी कभी मांगते हैं तो हंसी आती है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान से कहते हैं सुख संपत्ति दीजिए है? अरे शुद्ध भक्त होता है वह भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है। केवट को भगवान राम दे रहे थे, लिया नहीं लिया, इतिहास में अमर हो गया। भगवान देते भी है, भक्त लेते नहीं है। और ये तो गाते हैं सुख संपत्ति आए, और प्रभु भूल से भी पड़ोसी में न जाए, जो भी आए मेरे घर पर आए, साथ में ये भी भाव होता है। होते हैं कुछ लोग, एक बार ऐसा व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर लिया, धन की लालसा थी, कहा शिव जी से कुछ पैसे मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, परंतु एक शर्त है कि तुम जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को देना पड़ेगा मुझे। अब क्या करें पड़ोसी, अब ये सोचा कि मेहनत किया मैंने, शिव जी से मांगूंगा मैं और मुझसे डबल पड़ोसी को मिलेगा। यदि मैंने एक गाड़ी मांग ली तो उसको दो, वो दो गाड़ी वाला हो जाएगा। एक लाख रुपया मैंने शिव जी से मांगा तो पड़ोसी को 2 लाख। अब क्या किया जाए, तो आज का मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है। शिव जी ने कहा बोलो जल्दी बोलो क्या चाहिए। कहा कि एक काम करो, मेरे घर में एक कुआं बना दो और उसकी दीवार मत बनाना, और मेरी एक आंख फोड़ दो। कुछ लोग शाम को समझेंगे, कुछ लोग कल समझेंगे, परंतु आज लोगों में इतना द्वेष हो गया है कि उसने सोचा कि मेरे घर पर एक कुआं बनेगा तो पड़ोसी में 2 बनेगा, और मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की 2 फूटेगी, और आंगन में घूमेगा गिर जाएगा मरेगा साला। अच्छा है आज लोगों की दृष्टि ऐसी हो गई है, बाहर से जय जगदीश हरे करते हैं और अंदर से बस कामनाएं भरी हैं। भगवान को पूछते हैं कामना के लिए, मांगने के लिए। खैर मांगते हो ठीक है, परंतु भगवान से मांगोगे तो भी ठीक है, अन्य देवी देवताओं के पास जाकर मांगते हैं। मैं ये कह रहा हूं वास्तविक मुक्ति हमारे स्वरूप में स्थित हो जाना, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना, यही है वास्तविक मुक्ति, और इसी में ही सुख है, इसी में ही सुख है। बड़े बड़े योगी लोग प्रवचन करते हैं ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। प्रवचन सही है, गलत नहीं है, परंतु उससे बड़ी बात, ये भागवत जो है सनातन ग्रंथ है, सनातन धर्म का उपदेश भागवत में हुआ है, छोटे मोटे धर्म का उपदेश यहां नहीं है। यहां सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वह आपको मिल रहा है, फिर करना न करना आपके हाथ में है। व्यासपीठ के ऊपर बैठा हूं, सत्य का निरूपण करूंगा, अपने मन और बुद्धि की बात यहां नहीं चलती है, यहां वेद व्यास जी जो लिखते हैं उस बात को कह रहे हैं। इसलिए आपके हाथ में भागवत दिया गया है, यदि इसके बाहर का एक भी शब्द हो तो आप हमें वापस दे सकते हो। मैं बोल रहा हूं तो भागवत के अष्टम स्कंद के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में अगुणाय निर्वाण सुख के ऊपर बोल रहा हूं। निर्वाण सुख, वास्तविक सुख क्या है, कहते हैं निर्वाण, भगवान का धाम प्राप्त कर लेना, यही है वास्तविक सुख। तो बताइए वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हो, कौन चाहता है, कोई नहीं, यहीं पर सड़ते रहना मरते रहना चाहते हो, वास्तविक सुखी होना कौन चाहते हैं, हाथ ऊपर करो, जय हो, सब लोग बुद्धिमान हो गए हैं। तो भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी, जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान का भजन करने से ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। निर्वाण सुख, यहां पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि निर्वाण सुख अर्णवाय, मुक्ति में जितना सुख मिलता है उतना सुख है प्रभु आपका दर्शन करके मिलता है। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। हे प्रभु, आप सुख के समुद्र हो, सुख के सागर हो। वास्तव में भगवान कृष्ण जो है, भगवान विष्णु जो है, सुख के सागर है। दूसरे शब्दों में कह दूं, कृष्ण से ही सुख प्रकट होता है। 108 उपनिषद वेदव्यास जी ने लिखा है, उस उपनिषद में कृष्ण शब्द का अर्थ लिखते हैं, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैयर एक पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण शब्द में दो शब्द है, कृष्ण नाम में दो शब्द है, क्री कृष और अण। उपनिषद में लिखा है कृष का अर्थ होता है उत्पन्न होना, कृषि उद्योग, कृषि करते हैं ना, उत्पन्न करते हैं। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न, और अण का अर्थ होता है आनंद। अणच निवृत्ति वाचक, जिस व्यक्ति में से 2400 घंटा आनंद ही उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण कहते हैं। अब और एक बात मैं आपको कहूं, यदि आपको सुखी होना है तो सुखी व्यक्ति के पास जाओगे कि दुखी व्यक्ति के पास जाओगे? यदि आप दुखी हो और दुखी व्यक्ति के पास जाओगे तो वह अपना दुख गाने लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति सुखी व्यक्ति के पास जाता है ताकि उसे सुख मिले, और वास्तविक सुखी एकमात्र कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण से ही सुख निकलता है। सुखी होना है तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने लोग कृष्ण की शरण में गए हैं सब सुखी हो गए, और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी शरण में गए सब दुखी, किसी की भी शरण में। अन्य देवी देवताओं की शरण में भी गए, मर गए। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का भगत था, कृष्ण को छोड़कर। मैं इस बात के ऊपर बोल रहा हूं, कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति करोगे, चाहे देवी देवता पितृ कोई भी क्यों न हो, पूर्ण सुख नहीं मिल सकता है। हिरण्यकश्यपु भागवत के सप्तम स्कंद में कथा है, ब्रह्मा जी का भक्त और कितनी भक्ति किया, कहते हैं 36,500 वर्ष तक तपस्या किया। हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंदम एक राट व्यधिसत सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दुष्टि पादांगुष्टा श्रितावनी। ऊर्ध्व बाहु अपने दोनों भुजाओं पर करके, अपनी दृष्टि ऊपर करके, मात्र अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर, बिना खाए बिना पिए 36,500 वर्ष, कितना होता है। और तब जाकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और उस हिरण्यकश्यपु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार नरसिंह देव, उस हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह देव फाड़ रहे थे, ब्रह्मा जी बचाने नहीं आए। कितना बड़ा भगत, ब्रह्मा जी को बचाना चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए। अरे बचाने की बात तो दूर रही, देखने तक नहीं आए मेरे भगत का क्या हाल हो रहा है, भागवत में वर्णन है, नहीं आए। रावण शिव जी का भक्त था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक एक मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिया, परंतु उस रावण को जब भगवान श्री रामचंद्र मार रहे थे शिव जी बचा नहीं पाए। कंस दुर्गा देवी का भक्त था, भगवान ने मार डाला नहीं बचा पाए। कृष्ण ही सुप्रीम, कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान, सर्वोच्च ईश्वर। कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति आत्यंतिक सुखी हो जाता है। और उसके बदले में और एक कथा सुनाऊं, अजामिल भागवत के छठे स्कंद में, जो कोई तपस्या नहीं किया, कोई भक्ति नहीं किया, मरते समय एक बार नारायण का नाम ले लिया, नरक में जाने से बच गया। देखिए, एक और कृष्ण की भक्ति है, एक और अन्य देवी देवताओं की भक्ति। बुद्धिमान बनना चाहिए। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे, ब्रह्मा जी आगे कहेंगे, भगवान कहेंगे कि ब्रह्मा जी आप मेरे पास क्यों आए हो, आप इतने महान हो। तो ब्रह्मा जी इसी स्तुति में दो तीन श्लोक के बाद कहते हैं, प्रभु आपके सामने तो हम चिंगारी के समान है, और वे कहेंगे कि चिंगारी जब तक आग में रहती है तब तक वह उसमें प्रकाश होता है, वह चिंगारी भी जब आग से दूर हो जाती है तो वह भी बुझ जाती है। हे प्रभु, मैं, इंद्र, ये शिव, ये जितने भी खड़े हैं, ये आपकी चिंगारी के समान है, ये तो आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए संसार के लोग हमारी पूजा करते हैं, आपसे दूर हो गए तो संसार के लोग हमारी पूजा कभी नहीं करेंगे, ये ब्रह्मा जी कहेंगे। आगे कहते हैं निर्वाण सुख, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से आत्यंतिक सुख प्राप्त हो सकता है। वाण का अर्थ होता है दुख, और निर्वाण का अर्थ होता है दुख से शून्य सुख। जिस सुख में दुख न हो ऐसा सुख भगवान कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, अणोर अणिमने परिगण्य धामने। हे प्रभु, आप अणोर अणिमने, आप अणु से भी अणु हो, परमाणु, इसका अर्थ है प्रभु आप सबसे छोटे से छोटे भी हो, अणोर अणिम। भगवान चाहे तो सबसे छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और विभू से बड़े भी हो सकते हैं, अणोर अणिम। अणोर अणिम का एक अर्थ यह है कि आपको पहचानना बहुत मुश्किल है, और अणोर अणिम अर्थात अंतरात्मतया तदंत प्रवेश योग्याय। भगवान अणोर अणिम्न है, इससे हम ये जान सकते हैं कि भगवान हमारे अंतर आत्मा में प्रवेश हो सकते हैं अणु से। हे प्रभु, आप अणु से भी अणु हो और अपरिगण्य, आप अपरिगण्य, गण्य माने गिनना, गण्य माने जिसको गिन सकते हैं, और अपरिगण्य माने जिसको कभी नहीं गिना जा सकता है, अनंत। अपरिगणीय का अर्थ होता है अनंत। हे प्रभु, आप अनंत हो। अनंत का अर्थ क्या होता है? न अंत इति अनंत, जिसका कभी अंत न हो, जिसके रूप का अंत न हो, जिसके गुण का अंत न हो, जिसकी लीला का अंत न हो, जिसकी कथा का कभी अंत न हो, इसे अनंत कहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि हरि भगवान से विष्णु अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। भगवान का रूप अनंत, भगवान के गुण अनंत, सर्व गुण संपन्न। कहते हैं अनंत शेष अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के गुण गा रहे हैं, परंतु आज तक शेष नहीं कर पाए, इतने गुण है भगवान। ये पृथ्वी को एक मशीन में डालकर कागज बनाया जाए ये हो नहीं सकता है, परंतु ये कवि की कल्पना है, ये कवि लोग बहुत कल्पना करते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां रवि, जहां ये सूर्य नहीं पहुंच सकता है, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता है, वहां कवि पहुंच जाते हैं। एक कवि की कल्पना है कि मानो ये इस पृथ्वी को एक मशीन में डालकर कागज बनाया जाए, कितना कागज होगा, और जितने बड़े बड़े वृक्ष हैं उसकी कलम बनाई जाए, और समुद्र को सिलाई बनाई जाए, पृथ्वी को कागज बनाया जाए, बड़े बड़े वृक्ष की कलम बनाई जाए, समुद्र को सिलाई बनाई जाए, और लिखने के लिए सरस्वती, गणेश जी, बड़े बड़े देवताओं को बिठाया जाए, तो ये बड़े बड़े देवता भगवान के गुण को लिख लिख कर थक जाएंगे, ये कागज कम पड़ जाएगा, परंतु भगवान के गुण संपन्न गिन नहीं पाएंगे। ये है भगवान के अनंत गुण, अपरिगण्य, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आप अपरिगण्य हो, अनंत हो, और धामने महानुभावाय, आपका स्वरूप परम ऐश्वर्यशाली है। धाम मूर्ति यस्य तस्मै एवं महाप्रभावाय, आप बड़े प्रभावशाली हो, आपके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है, आपके प्रभाव का वर्णन करने में हम योग्य नहीं है, शक्य नहीं है, हम आपका आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नमो नमः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका प्रभाव कौन बता पाए, बड़े बड़े लोग नहीं बता पाए। शेष दिनेश गणेश महेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी पुनीतव पार न पावे। एक से एक लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु पार नहीं पा पाए, तो मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या आपको पार पाएगा। प्रभु मैं आपके प्रभाव को नहीं देख सकता हूं, नहीं समझ सकता हूं, इसलिए मात्र आपको प्रणाम कर सकता हूं, नमो नमः, नमस्कार। एक ही श्लोक में दो बार नमः नमः पुनरुक्ति, और किसी भी श्लोक में पाठ में एक ही चीज दूसरी बार यदि कही जाए तो दोष माना जाता है, पुनरुक्ति एक दोष है। परंतु यहां दो बार नमः नमः इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी का भाव है कि नमस्कार करने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, और दूसरा भाव गोस्वामी गिरधर जी कहते हैं, नमस्कार द्विरुक्ति दुर्लभ भगवान दर्शन लाभेन आदर सूचिका। एक आचार्य बहुत सुंदर टीका लिखे हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी दो बार नमः नमः अर्थात बारंबार नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह आचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान तुरंत प्रकट होते नहीं है, और अब प्रकट हुए हैं तो प्रणाम जितना हो सकता है उतना कर लो, बाद में कभी हमारे सामने आए न आए क्या भरोसा। इसलिए नमः 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 बारंबार प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि आप सुख के सागर हो, मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हो। तो भगवान मानो ब्रह्मा जी को कुछ कहते हैं, मानो भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा जी आप मुझे सुख का सागर कह रहे हो, यदि मैं सुख का सागर हूं तो संसार के सब लोग सुखी होने चाहिए। सब लोग तो सुखी है नहीं, बेचारे रो रहे हैं, राजस्थान में रो रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, और वहां सूरत में रो रहे हैं ज्यादा बारिश हो रही है, सबको कुछ ना कुछ तो कमी है ही। मानो भगवान कहे कि आप ऐसा कह रहे हो कि मैं सुख का सागर हूं, सुख का दरिया हूं, तो फिर सब लोग सुखी होने चाहिए, कुछ लोग सुखी कुछ लोग दुखी, ऐसा क्यों है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप सुख के सागर हो, परंतु संसार का व्यक्ति आपसे तब ही सुख प्राप्त कर सकता है जब वह आपकी भक्ति करता है। आप सुखी हो तो उससे क्या हो गया, जब कोई आपकी भक्ति करेगा तब व्यक्ति सुखी होगा ना। इस बात को ब्रह्मा जी नौवें श्लोक में कहते हैं, रूपम तवेतत् पुरुष शभेज्यम श्रेयोर्तिमि वैदिकतांत्रिकेण योगेन दात सहन स्त्रीलोकान पश्याम मुष्मिन्नु विश्वमूर्तो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप सुख के सागर हो, परंतु रूपम तवेतत् पुरुषर्ष भैज्यम, आपके इस दिव्य पुरुष रूप को जब कोई इज्यम, इज्यम माने पूजा भक्ति करता है, तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। और इस संसार के प्रायः लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महानुभावन, बड़े बड़े महानुभाव आपकी इज्या आपकी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषम, आप परम पुरुष हो। एक संत कहते हैं, पुरुष ऋषभम पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है। यहां पर एक शब्द है पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ऋषभ का अर्थ होता है उत्तम, पुरुष ऋषभ पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम। भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है, कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम है। अभी अभी पुरुषोत्तम मास इस साल में, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, अभी अभी पुरुषोत्तम मास था। ये पुरुषोत्तम मास जो है कृष्ण का महीना है, क्योंकि पुरुषोत्तम का अर्थ कृष्ण होता है। जो पुरुषों में उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब इसके 2 अर्थ होंगे, इस संसार के जो पुरुष हैं उससे जो उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। अब आप बताइए, संसार में सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर ही है, श्याम सुंदर से ज्यादा कौन सुंदर है? परंतु कल मैंने एक व्याख्या की थी कि संसार में कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्री है, सब भगवान की प्रकृति है, शक्ति है, तब पुरुष का कोई सवाल ही नहीं है भगवान के अलावा। तब यह अर्थ यदि लिया जाए तो पुरुष अवतार 3 है, कारोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु। ये 3 विष्णु को पुरुष अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु को पुरुष अवतार कहते हैं। तो ये 3 विष्णु, कारोदकशायी, शिरोदकशायी, गर्भोदकशायी, ये 3 पुरुष अवतार से भी जो उत्तम है, ये 3 पुरुष से भी जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और ये 3 विष्णु से उत्तम है भगवान कृष्ण, क्योंकि 2400 घंटा विष्णु का चरण सेवन करने वाली लक्ष्मी भी जब कृष्ण को देखी तब विष्णु को छोड़कर कृष्ण का दर्शन करने के लिए वृंदावन में आई। और आज भी लक्ष्मी जी बेल वन में खड़ी खड़ी तपस्या कर रही हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुष अवतार पुरुष अवतार से श्रेष्ठ है। तो कहते हैं तव एतत् पुरुषम रूपम, ब्रह्मा जी कहते हैं आपके इस पुरुष रूप को इज्यम, लोग उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन कैसे लोग भक्ति करते हैं? कहते हैं श्रेय अर्थी भी। आप श्लोक को देखकर कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा। इस संसार के कौन कौन लोग भगवान की भक्ति करते हैं? कहते हैं श्रेय अर्थी भी, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना श्रेय चाहते हैं वही भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में जो भक्ति करते हैं उनका ही कल्याण होता है। जो भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं श्रेय अर्थ भी तब एतत् रूपम इज्यम, भक्ति करते हैं आपके इस रूप की। किस प्रकार से भक्ति करते हैं? कहते हैं 2 विधि से। भगवान की भक्ति 2 विधि से की जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं वह 2 विधि कौन है? कहते हैं वैदिक तांत्रिकेण। भगवान को 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है, वैदिक विधि से और तांत्रिक विधि से। ये 2 विधि भगवान को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। वैदिक विधि का अर्थ होता है वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके जो भगवान को प्राप्त करते हैं उसे वैदिक विधि कहते हैं। वेदों का सार श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, भागवत कथा सुन के भगवान की प्राप्ति करना, यह है वैदिक विधि। और तांत्रिक विधि किसे कहते हैं? नारद पंचरातक विधि से। नारद जी ने एक विधि बनाई है, नारद पंचरातक विधि, जिसमें भगवान की आरती, पूजा, उपासना, मंगला आरती, उनके वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये पूजा सामग्री, इस विधि से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और हम सब जो भक्त हैं ये 2 विधि से भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ये 2 विधि से भगवान की भक्ति चलती है। कथा भी करते हैं भगवान की, विग्रह की पूजा भी करते हैं, 2 विधि से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो हे प्रभु, आपके इस रूप को श्रेय अर्थी भी अपना कल्याण चाहने वाले वैदिक और नारद पंचरातक विधि से आपकी भक्ति करते हैं। धात सन त्रिलोकान, हे धात। देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द है धात। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को धाता कह रहे हैं। धात का अर्थ क्या होता है? सर्जनहार। कभी कभी कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृजनहार मानते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन किए हैं, बात सत्य है, परंतु इस सृष्टि का मूल सृजन भगवान विष्णु ने किया है। जैसे आपको पूछा जाए, आपने जो कुर्ता पहना है ये कुर्ता किसने बनाया, तो आप कहेंगे किसी टेलर ने, किसी दर्जी ने बनाया। वास्तव में कुर्ता टेलर ने नहीं, ये कुर्ता किसी गुणकर ने बनाया है, क्योंकि वह गुणकर यदि यह कपड़ा नहीं बनाता तो वह टेलर, वह दर्जी कैसे वह सी सकता था। वैसे ही संसार की डिजाइन जो है ब्रह्मा जी ने की, परंतु संसार को बनाने के लिए जो मटेरियल था पंच महाभूत, ये भगवान विष्णु ने अपने शरीर से प्रकट किया है। इसलिए इस संसार के वास्तविक सर्जनहार भगवान विष्णु है, इस बात को ब्रह्मा जी जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को धातह कह रहे हैं, हे धातह, योगेन धातह सहन त्रिलोकान, आप त्रिलोकान यह तीनों लोकों के धाता हो, सर्जनहार हो, और विश्वमूर्तो अमुष्मिन नुह विश्वमूर्तो, हे प्रभु आप ही विश्वमूर्ति हो, आप केवल इस सृष्टि का सर्जन ही नहीं करते हो, इस सृष्टि का सर्जन करके इस विश्व में प्रवेश करते हो, इसलिए आपको विश्वमूर्ति कहा जाता है। भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, इस सृष्टि में रहने वाले जीवों में भी प्रवेश करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मम देहे गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं सबके देह में प्रवेश करता हूं। भगवान सबके शरीर में है और सब लोग भगवान के शरीर में है, ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है, इसे कोई समझ नहीं सकता है। भगवान सबके शरीर में है और सब लोग भगवान के शरीर में, भगवान सबके शरीर में कैसे हैं, परमात्मा के रूप में, और सब लोग भगवान के शरीर में कैसे हैं, कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखा दिया। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, देवी कुंती ने भी कहा कि हे प्रभु नमो पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप इस संसार के अंदर भी रहते हो और इस संसार के बाहर भी रहते हो, परंतु सब लोग इस बात को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो जानता हूं कि आप विश्व मूर्ति हो, आप ही विश्व की मूर्ति हो, आप इस विश्व में प्रवेश करके विश्व को चलाते हो। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान को स्तुति किए, आप विश्व मूर्ति हो, आप इस सृष्टि के सर्जनहार हो, आप ही इस सृष्टि को चलाते हो। तो मानो भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा मेरे जैसे तो बहुत लोग आ गए होंगे सृष्टि को चलाने के लिए, बहुत लोग चलाते होंगे। वास्तव में भगवान ने ऐसा कहा नहीं, परंतु आगे के श्लोक को समझने के लिए आचार्य गण दो श्लोक को जोड़ने के लिए एक प्रश्न उठाते हैं। तो मानो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप कहते हो मैं ही सर्जनार, मैं ही पालनार, सब कुछ मैं ही करता हूं, तो मेरे पहले भी बहुत आ चुके होंगे और मेरे जाने के बाद भी भविष्य में बहुत लोग आएंगे और सृष्टि को चलाएंगे। तो ब्रह्मा जी अगले श्लोक में कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, त्वयि अग्र आसीत, त्वयि मध्य आसीत, त्वयि अंत आसीत अधिमात्म तंत्रे त्वादि अंतो जगतोस्य मध्यम घटस्य मृत्सेव परः परस्मात्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु न तो आपके पहले कोई आया था, न भविष्य में आपके जैसा कोई आएगा, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में आप ही हो, आप ही थे और आप ही रहेंगे। वे कहते हैं त्वयि अग्र आसीत, वर्तमान जो चल रहा है उसके अग्र भाग में, इसके पहले भूतकाल में त्वयि आप ही थे, त्वयि अग्र आसीत, भूतकाल में प्रारंभ में आप ही थे, अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तो इस सृष्टि के पहले आप ही थे, त्वयि मध्य आसीत, जब यह सृष्टि है फिर भी आप ही हो, त्वयि अंत आसीत, और अंत में भी आप ही रहोगे। इदम आत्मतंत्रे, ये आपकी सिस्टम है तंत्र। सृष्टि के पहले भी आप हो, सृष्टि के बाद में भी, और सृष्टि में भी आप हो। मानो यह बात किसी को समझ में न आए तो ब्रह्मा जी एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं घटस्य जैसे घड़ा, घट घट का अर्थ होता है घड़ा, घटस्य मृष्णेव पर परस्मात्। जैसे घड़ा जो होता है मिट्टी से बनता है, घड़ा मिट्टी से बनता है, घड़े से पहले वो घड़ा क्या था? मिट्टी था। वो मिट्टी घड़ा बन गई, और जब वो घड़ा फूट जाता है तब वो मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी जो है घड़े के पहले भी है, मिट्टी घड़े के बाद भी है, और घड़ा जब है तब भी मिट्टी है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के बाद भी है, और सृष्टि में भी है घड़े के रूप में। अद्भुत ब्रह्मा जी दृष्टांत है। तब मानो भगवान कहे कि ब्रह्मा ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भगवान भी अपने भक्तों से सब सुनना चाहते हैं। जैसे छोटा सा बालक तोतली बोली में कुछ बोलता है, पिताजी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बालक उसे, अच्छा ये कैसे हुआ, क्या हुआ। पिता को अच्छा लगता है पुत्र की, आखिर देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु का पुत्र ही है, भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब मानो भगवान ने कहा कि ऐसा ये घड़े का दृष्टांत देकर आप इतना शॉर्टकट में समझा रहे हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं अकेला इतने करोड़ों करोड़ों जीवों का सर्जन करूं। मैं तो यहां 24 घंटा सोते रहता हूं, तुम देखते नहीं हो। कारणोदक शाही, शाही माने सोना, गर्भोदक शाही सोना, शिरोदक शाही, मेरा काम ही है सोने का। और आप कहते हो कि इतना सृष्टि का सर्जन मैंने किया, अरे एक घर का सर्जन करने में व्यक्ति का जीवन चला जाता है, और मैं अकेला इतनी बड़ी सृष्टि का सर्जन कैसे किया, हो नहीं सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। तब ब्रह्मा जी अगला श्लोक कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, ये सृष्टि का सर्जन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपकी छोटी सी माया शक्ति। त्वम माय यात्मा श्रेया स्वयेदम निर्माय विश्व तदनु प्रविष्ट पश्यन्ति युक्ता मनसा मनुष्यनो गुणम व्यवाये व्यगुणम विपश्चित। प्रभु आप इतने ऐश्वर्यवान हो कि संसार का सर्जन करने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। त्वम मायया, आपकी छोटी सी माया ही संसार का सर्जन कर देती है। ये संसार का सर्जन करने के लिए भगवान को ईंट और सीमेंट नहीं रखनी पड़ती। भगवान केवल माया को इशारा करते हैं और माया के द्वारा यह सृष्टि हो जाती है। ये माया जो है, इस संसार में जितनी भी प्रकृति है भगवान के इशारे से चलती है। इस संसार में एक ऐसा धर्म है, संप्रदाय है, उसमें यही प्रचार है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब कुछ आया है, प्रकृति में ही मिलना है, प्रकृति ही सब कुछ है। परंतु उन लोगों को कहना चाहिए, ठीक है प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब कुछ आता है, प्रकृति से ही सब कुछ बना है, परंतु प्रकृति क्या तुम्हारी नानी है? ये प्रकृति किसी ना किसी की तो है, ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। ये प्रकृति संसार जो देख रहे हैं ये सब भगवान की शक्ति है, और भगवान के इशारे से चलती है। भगवान को यहां आना नहीं पड़ता। गीता में भगवान ने कह दिया, अर्जुन मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नाने ये कौनते ये जगत भी परिवर्तते। ये जगत, ये प्रकृति, ये सूर्य चंद्र तारे ब्रह्मा, ये नक्षत्र मेरे इशारे से चलते हैं। मद भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। ये हवा जो बह रही है भगवान कहते हैं मेरे भय से बह रही है। ये सूर्य रोज सुबह आकाश में उदय होता है, शाम को अस्त होता है, मत भयात मेरे भय से। जैसे ऑफिस में मालिक के भय से वह नौकर टाइम से आ जाता है, टाइम से चला जाता है, ये सूर्य चंद्र सब मेरे भय से आकाश में आते हैं। ये अग्नि चंद्र तारे ये मृत्यु सब मेरे भय से काम करते हैं। ठीक है, प्रकृति से ही सब कुछ होता है, परंतु ये प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। गीता में भगवान ने कहा, और केवल कहा ही नहीं, दिखा दिया। महाभारत के प्रसंग में आइए, महाभारत में, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में अर्जुन कहीं युद्ध कर रहे थे और यहां कौरवों ने मिलकर छल कपट करके अभिमन्यु का वध किया। अभिमन्यु का वध, और उसमें भी जयद्रथ ने कपट करके अभिमन्यु का वध किया। अर्जुन को पता चला जयद्रथ ने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है। मारा होता सीधा सीधा युद्ध के नियम के अनुसार मारा होता तो ठीक था, परंतु छल कपट करके मेरे पुत्र को मारा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्य अस्त, कल संध्या तक जयद्रथ को ढूंढकर उसको मारूंगा नहीं तो मैं स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अब क्षत्रिय की प्रतिज्ञा तो आप जानते हैं, क्षत्रिय मर जाते हैं परंतु अपनी प्रतिज्ञा से विफल नहीं होते।
राघो को लरीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई।
राघो को लरीत
सदा चली आई,
राम राम राम
राम राम राम सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम
राम राधे श्याम श्याम श्याम
नरोर गांव के सब माता बहनों
हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम
हरे राम राम
राम सीता राम राम राम
हरे राम 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम
सीता राम 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 राधे श्याम
श्याम हरि बोल सीता राम राम।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया शक्ति से ये संसार का निर्माण होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरे अधीन है, और इसी में आपको एक दृष्टांत महाभारत का। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी ने मेरे पुत्र को छल कपट करके मारा है, कल संध्या तक उस व्यक्ति को मैं मार डालूंगा, अगर नहीं मरा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, जयदत्त को यह बात पता लगी कि आज अर्जुन मुझे मारने वाला है। यह सुनकर जयद्रथ उस दिन युद्ध भूमि में आया ही नहीं, पाताल में जाकर छिप गया। और उस दिन अर्जुन ने जयद्रथ को बहुत ढूंढा, परंतु जयद्रथ मिला नहीं। अंत में संध्या का समय हुआ, अर्जुन ने देखा संध्या हो गई और मेरा शत्रु मेरे सामने आया नहीं है। अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ। जयद्रथ ने देखा कि संध्या हो गई, अब दुश्मन के मरने का धनाजा तो इस आंखों से देखना चाहिए, शत्रु कैसे मर रहा है ये तो इस आंखों से देखकर सुख प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर जयद्रथ पाताल से निकला, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में आया। अर्जुन अपने ही बाण से अपने मारने की तैयारी, और जयद्रथ आकर ठठाकर हंस रहा है, मुझे मारने चला था प्रतिज्ञा लेकर, स्वयं को मरना पड़ा। जयद्रथ हंस रहा है और उसी समय आश्चर्यमय घटना दिख रहा था संध्या, परंतु उसी समय सूर्य बादलों से बाहर निकला और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन संध्या नहीं हुई है, दोपहर के 2 बजे हैं, शिकार तुम्हारे सामने है, अपने गांडीव से वध कर दो उसका। अर्जुन के गांडीव से वध हुआ और वहां पर यह साबित हो गया कि यह सूर्य चंद्र तारे भगवान के इशारे से काम करते हैं। संध्या नहीं हुई थी, कृष्ण ने सूर्य को इशारा किया था, सूर्य छिप गया और जयद्रथ आते ही कृष्ण ने इशारा किया सूर्य सामने। इससे साबित होता है कि यह सूर्य भगवान के इशारे से काम करता है, सूर्य ही नहीं यह प्रकृति भगवान के इशारे से चलती है। ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं, तुम माय यात्म श्रेयास्व यादम निर्माय विश्वम तदनु प्रविष्ट। हे प्रभु, आपकी माया के द्वारा किस प्रकार से भागवत के द्वितीय स्कंद में बहुत विस्तार से वर्णन है कि भगवान माया को प्रकट करते हैं। माया के 3 गुण प्रकट होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से ही यह संसार की सभी वस्तु ये निर्माण होती है। हे प्रभु, इस संसार का निर्माण करने के बाद तत् अनुप्रविष्ट, तत् बाद में आप इस विश्व में अनुप्रविष्ट प्रवेश होते हो। ब्रह्मा जी ने कितना भी यह विश्व सुंदर यह विश्व बनाया, परंतु जब तक भगवान विष्णु इसमें प्रवेश नहीं हुए तब तक यह चलायमान नहीं हुआ। कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर आंख हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, हाथ हो, पांव हो, रंग हो, परंतु हृदय में परमात्मा न हो तो यह शरीर चल नहीं सकता है। तदनु प्रविष्ट, जब तक भगवान इस शरीर में प्रवेश नहीं होते हैं तब तक यह शरीर चल नहीं सकता है, यह विश्व चल नहीं सकता है। भगवान इस विश्व का सर्जन भी करते हैं और इस विश्व में प्रवेश भी होते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि संसार के सब लोग भगवान शरीर में हैं और विश्व में हैं, फिर भी भगवान को देख नहीं सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिण। लेकिन प्रभु जो मनीषी है, जो बड़े बड़े मुनि है, वे लोग पश्यन्ति आपको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कहते हैं युक्ता मनसा, एकाग्र मन करके आपको देखा जा सकता है। भगवान को देखने के लिए मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। युक्त मनसा मनीषिण पश्यन्ति, युक्त मन से, एकाग्र मन से बड़े बड़े मुनि आपको देखते हैं। तब यहां सीधी क्लियर बात है कि भगवान को देखने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। बिना मन को एकाग्र किए भगवान को देख नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मन एकाग्र होता ही नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम वन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और आप कहते हो मन मना भव मद भक्तो मई एव मन आदत्स्व, मन लगाओ मन लगाओ। क्या खाख मन लगाए, ये मन वश में रहता ही नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण, ये कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। कितना कहते हैं वायु के समान, ये वायु कितना चंचल है। दो दिन से तो बहुत चंचल हो गया है, पंडाल उड़ा दिया। अर्जुन ने कह दिया वायु को भी वश में किया जा सकता है, मैं मेरे गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। और जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक न पश्यन्ति भगवान को नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखने के लिए मन वश में करना होगा। इस संसार में सबका यही प्रश्न है, मन कैसे वश में किया जाए, क्योंकि जितना भी दुख है मन से ही उत्पन्न होता है। जितनी भी चिंता, जितने भी रोग है मन से होते हैं। ये रोग मन से, आदि व्याधि उपाधि, ये व्याधि जो है इसका आदि क्या है, उपाधि मन। इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। कई लोग मन को एकाग्र करने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, हम सिर नीचे पांव ऊपर न जाने क्या क्या करते रहते हैं, परंतु मन को वश में करना है तो सीधा रास्ता है। मन को वश में करने के लिए मंत्र जपना होगा। भगवान को देखना है ना, भगवान को देखने के लिए मन वश में करना पड़ेगा और मन वश में करने के लिए मंत्र जपना होगा। क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है मनः त्राईते इति मंत्र। मंत्र जो है उसमें दो अक्षर है, म और त्र। म का अर्थ होता है मन और त्र का अर्थ होता है तारना, त्राण करना। जो मन को तारे उसे मंत्र कहा जाता है। मन वश में करने के लिए, भगवान को देखने के लिए मंत्र जपना होगा। तब आप कहोगे तो हम तो जानते हैं मंत्र जपेंगे हम, लेकिन कौन सा जपेंगे? संसार में बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन सा मंत्र जपा जाए। वेदों में हजारों मंत्र, पुराणों में हजारों मंत्र, कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? मत तो अलग अलग युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए विशेष मंत्र जिसे महामंत्र कहा जाता है, ये हरे कृष्ण मंत्र। आप कहोगे आप हरे कृष्ण वाले हो इसलिए आप कहोगे हरे कृष्ण मंत्र महान है। भक्त तो ऐसा नहीं है, ये कोई संकीर्णता नहीं है। और न तो हरे कृष्ण वाले मुझे 2-3 लाख रुपए देने वाले हैं और यहां भेजे हैं, ऐसा भी नहीं है। व्यास देव की ही पीठ पर बैठा हूं, व्यास देव जी ने जो लिखा है वो बोल रहा हूं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए कौन सा मंत्र? वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उनमें से एक है पद्म पुराण। इतना स्पष्ट आपको कोई नहीं सुनाएगा। और उस पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कौन सा मंत्र जपना चाहिए। देखिए संस्कृत बोल रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे प्रभु आप झूठ बोलते हो। डायरेक्ट वेद व्यास ने जो लिखा है वही आपको कह दूं, आप समझ लीजिए। वेद व्यास जी ने लिखा है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा और कृष्ण जी स्थान पर रहते हैं वैकुंठ में। उस वैकुंठ में यदि आपको जाना है तो क्या करना है, मंत्र जपना है। कौन सा मंत्र? कहते हैं द्वात्रिश अक्षरम मंत्र। ऐसा मंत्र जिस मंत्र में द्वात्रिश अक्षर हो। द्वा का अर्थ होता है दो और त्रिश का अर्थ होता है तीस। तीस प्लस दो कितना होता है, कितना? बत्तीस। ऐसा मंत्र जपना चाहिए जिसमें बत्तीस अक्षर हो। देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, वेद व्यास जी पद्म पुराण में ये श्लोक में कहते हैं द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, जिस मंत्र में बत्तीस अक्षर हो। और आगे क्या कहते हैं, नाम षोडश कान्वितम, और उस मंत्र में सोलह नाम हो। जिस मंत्र में बत्तीस अक्षर और सोलह नाम हो, प्रजपन वैष्णवो नित्यम, इसे प्रकृष्ट रूप से जप करना चाहिए। यदि आप इसका जाप करोगे तो राधा कृष्ण वैकुंठ में जहां रहते हैं वहां आप चले जाओगे। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें 30 32 अक्षर हैं और 16 नाम है?
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। इसके अलावा और कोई है तो बताइए। कोई नहीं है, इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये महामंत्र। केवल पद्म पुराण ही नहीं, सैकड़ों दृष्टांत लेकर बैठा हूं, समय हो गया है, लेकिन फिर भी उपनिषद में लिखा है, कली संतरण उपनिषद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो मंत्र है, इति षोडशकाम नामनः कली कल्मष नाशनम, ये 16 नाम वाला मंत्र ही कलयुग के दोषों से मुक्त करेगा। नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और सभी वेदों को देखने के बाद यह महामंत्र ही कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकता है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह मंत्र दिया था सृष्टि के प्रारंभ। इस प्रकार पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिण, बुद्धिमान व्यक्ति यह महामंत्र जपकर, महामंत्र जपकर मनसा युक्ता अपने मन को एकाग्र करते हैं, और मन को एकाग्र करके भगवान को देखते हैं। गुणव्यवाये अपि अगुणम विपश्चित। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यह सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, और फिर भगवान इस सृष्टि में प्रवेश होते हैं, लेकिन फिर भी गुण अव्यवाये अभी अगुणम विपश्चित, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, बड़े बड़े मुनि भक्ति के द्वारा आपको देखते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आपको देखते हैं। तो भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है कि मुझे देखा जा सकता है तो सब लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या कहा भगवान ने ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी यदि ही मैं इस संसार में हूं, इस सृष्टि में हूं, तो सब लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते? संसार में कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप लोग कृष्णा कृष्णा करते हो, कभी देखा है कृष्ण को? बिना देखे बिना जाने कृष्ण की भक्ति करते हो, जब देखेंगे तब मानेंगे, जब कृष्ण को देखेंगे तब भक्ति करेंगे। हम लोग थोड़ा उल्टा सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, जब भगवान को देखेंगे फिर भक्ति करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं, जब भक्ति करेंगे फिर भगवान को देखेंगे, ये सिस्टम ठीक है। हमारा जो सिस्टम है थोड़ा उल्टा सिस्टम है। हम क्या सोचते हैं कि भगवान को देखेंगे फिर भक्ति करेंगे, परंतु ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं प्रभु, इस संसार में आप हो निश्चित सब जगह पर, अत्र तत्र सर्वत्र, परंतु आपको देखने के लिए कुछ करना होता है। बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा ब्रह्मा जी समझाते हैं, यथाग्नि मेधस्य वृत्तम च गोषु भुव्यन्न अम्बु युमने च वृत्तिम योगे मनुष्यादयंती त्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। कवयो वदन्ति, बड़े बड़े कवि, ये लोग शाम का नाम लिया। अरे भाई नहीं, 12 बजे तक नहीं है, आधा एक घंटे तक चलेगा, सब लोग बैठकर सुनिए। डर गए सब लोग। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
कवियो वदंती, बड़े बड़े कवि वदंती कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो कवि का अर्थ जान लेना है। कवि किसे कहते हैं? क समय न वदे इति कवि, जो गलत समय पर नहीं बोलता है उसे कवि कहते हैं। कुछ लोगों के मन में हुआ होगा, प्रभु आप भी गलत समय पर बोल रहे हो, समय तो हो गया है। परंतु हम कवि नहीं है, हम तो मानते हैं। एक बार मैं प्रवचन में कह रहा था कि देखो, मर्यादा होनी चाहिए किसी भी वस्तु की। कोई भी काम करना है तो अति नहीं होना चाहिए। यदि कितना भी सुंदर आंख हो, हाथ हो, कान हो, पांव हो, परंतु मनुष्य में मर्यादा नहीं है तो वह शरीर कुछ काम का नहीं। मैं दृष्टांत दे रहा था, गाड़ी का कितना भी अच्छा टायर हो, स्पीड हो, रंग हो, सीट हो, स्टेयरिंग हो, परंतु ब्रेक न हो तो वह गाड़ी कुछ काम की नहीं है। मैं ऐसा कह रहा था तो एक व्यक्ति ने, क्या पता श्रोताओं में ही बैठा था, बैठे बैठे मुझे मैसेज भेजा। क्या था मैसेज? कितने भी सुंदर बजाने वाले हो, कितना भी सुंदर माइक हो, कितना भी सुंदर पंडाल हो, परंतु प्रवचन में यदि ब्रेक न हो तो वक्ता कुछ काम का नहीं है। परंतु ये तो भगवान की भक्ति है और उनमें भी एकादशी है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। कवियो वदंती, कवि का अर्थ क समय न वदे इति कवि। कवि का एक अर्थ होता है कटु न वदे, कटु न वदे इति कवि। जो कटु नहीं बोलता है, कटु माने कड़वा शब्द। कुछ लोग बोलते हैं तो उसकी बोली बंदूक की गोली की तरह चलती है, सामने वाले के हृदय को भेद कर चली जाती है। किसी की बोली में इतना कड़वापन रहता है, इतनी स्ट्रांग बोली होती है कि बेचारा सामने वाला व्यक्ति नर्वस हो जाता है। बोलना चाहिए तो नम्र होकर बोलना चाहिए, वाणी में कुछ मधुरता होनी चाहिए। जिसकी वाणी में मधुरता है वह कवि है। वास्तव में ये वाणी जो है एक ऐसा शस्त्र है जिससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। यदि वाणी वश में है तो दुनिया को जीत सकते हो, और वाणी वश में नहीं है तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हो। द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी केवल इतना ही बोली, अंधा का पुत्र अंधा, महाभारत हो गया और करोड़ों लोग मर गए। यह है वाणी का प्रभाव। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, कटु नहीं बोलना चाहिए, इसे कवि कहते हैं। तो कवियो वदंती, परंतु यहां पर कवि का अर्थ है भक्त। कवि का अर्थ होता है भक्त। बड़े बड़े भक्त संत साधु महात्मा वदंती क्या कहते हैं, कहते यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोशु। यथा अग्नि, पहला दृष्टांत देते हैं जैसे अग्नि। इस संसार में जितने भी लकड़े हैं और जहां भी लकड़े हैं सभी लकड़े में अग्नि है कि नहीं है। भारत के लकड़े में भी अग्नि है, लंदन के लकड़े में भी अग्नि है, यूरोप और अमेरिका के लकड़े में भी अग्नि है। और किसी को लकड़ा दिया जाए, ये लो इसमें अग्नि है, लकड़े को तोड़ेगा फाड़ेगा अग्नि नहीं निकलेगी। लकड़े में अग्नि है परंतु उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ विधि है। उस लकड़े को किसी लकड़े के साथ घिसा जाए या दियासली लगाया जाए तो उस लकड़े से अग्नि प्रकट हो सकती है। बाहर से नहीं लानी पड़ती, लकड़े में ही अग्नि है, परंतु उस अग्नि को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है। दूसरा दृष्टांत देते हैं अमृतम च गोशु, गाय में दूध, गायों में दूध होता है। यदि किसी को गाय दिया जाए, ये लो गाय इसमें से दूध निकाल लेना, तलवार लेकर गाय को काट दे, दूध तो नहीं मिला। गाय में दूध है परंतु उस दूध को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि होती है। भुवि अन्नम, तीसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे इस पृथ्वी में अन्न, पृथ्वी में अन्न है परंतु उसकी कुछ विधि होती है प्राप्त करने की। कहा जाए कि यहां पृथ्वी में आलू है तो कोई खड्डा करने लगे 50 फुट का, आलू तो नहीं मिला, तो ऐसे आलू नहीं मिलते हैं। उसका बीज रोपा जाता है, सिंचन किया जाता है, तब आलू निकलते हैं पृथ्वी से। और उद्यमने च वृत्ति, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अग्नि पूरे संसार में है परंतु लकड़े में अग्नि है परंतु उसे प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत की करनी पड़ती है। गाय में दूध है परंतु उसे निकालने के लिए उसे घास खिलाना होगा, बछड़े को लेकर जाएंगे वो अपने थन में दूध छोड़ेगी फिर उसे दूध प्राप्त कर सकते हैं। गाय में दूध है परंतु निकालने के लिए कुछ प्रयास करना होता है। और पृथ्वी में अन्न है परंतु प्राप्त करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भगवान अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर है परंतु उसे देखने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और वह मेहनत है भक्ति। योगे मनुष्या यदयंति हित्वा, संसार में कुछ लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि विधि से भगवान की भक्ति नहीं करती। देखिए भक्ति करनी चाहिए विधि से, जैसे लकड़े से अग्नि निकालने की कुछ विधि होती है, गाय से दूध निकालने की कुछ विधि होती है, भूमि से अन्न निकालने की कुछ विधि होती है, वैसे भगवान को प्राप्त करने की भी कुछ विधि होती है। भक्ति की भी कुछ विधि होती है, और वह विधि क्या है? 9 प्रकार की विधि है। कौन सी कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की विधि के द्वारा भगवान को प्रकट किया जा सकता है। भगवान को प्रकट करने के ये 9 तरीके हैं, उनमें से सबसे मुख्य और प्रथम तरीका है श्रवणम। श्रवण का अर्थ है मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, यह है श्रवण विधि, श्रवण भक्ति। ऐसी श्रवण, इस प्रकार से आप श्रवण करते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान का दर्शन होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, श्रवण भक्ति। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि ऐसी श्रवण भक्ति के द्वारा कोई भगवान को प्राप्त किया है? हाँ, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज मात्र 7 दिन में भागवत कथा सुनकर भगवान के धाम में पहुंच गए। तत्पश्चात भक्ति की दूसरी विधि कीर्तनम, भगवान के गुणगान गाना, नाम गाना कीर्तन कहते हैं। ऐसा कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्राप्त हुए। तीसरी विधि है स्मरणम, भगवान के रूप गुण लीला नाम का स्मरण करना, स्मरण विधि से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि से कोई भगवान को प्राप्त हुआ है? हाँ, प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति करते थे। चौथी विधि है पाद सेवन, भगवान के चरण दबाना। लक्ष्मी जी इस विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त हैं। पांचवी विधि अर्चनम, भगवान की आरती पूजा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके आचार्य हैं पृथु महाराज। छठी विधि है वंदनम, भगवान को प्रणाम करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके आचार्य हैं अक्रूर जी। सातवीं विधि है दास्यम, भगवान का दास बनकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। राम का दास बनकर भगवान को प्राप्त किया। आठवीं विधि है साख्यम, भगवान का सखा बनकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और इस विधि के आचार्य हैं अर्जुन। ये सबके एक एक दृष्टांत दे रहा हूं। अर्जुन जी कृष्ण का सखा बनकर प्राप्त कर लिया। और नौवीं भक्ति, अरे नवदा भक्ति, और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति, नौ प्रकार की विधि। और इस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि महाराज, अपना सब कुछ देकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। नौ विधि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर आज आपने सुना कि यह समस्त 33 करोड़ देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में है, कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण का नाम लेना, और नाम में भी कौन सा नाम, कौन सा मंत्र, महामंत्र जपना चाहिए, और यह सब कार्य करके हम भगवान को देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको देखने की यह विधि है। तो मानो भगवान ब्रह्मा जी से कहे, मुझे देखकर आपको क्या मिलेगा? भगवान मानो कहे, मुझे देखने के लिए इतनी इतनी मेहनत, मुझे प्राप्त करके, मुझे देखकर आपको क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर अगले प्रवचन में देंगे। यहां पर हम प्रवचन समाप्त करते हैं और ब्रह्मा जी की स्तुति। अब दो तीन श्लोक बाकी हैं, फिर भगवान का प्रवचन शुरू होगा, और भगवान एक प्लान देंगे कि अब आप एक काम करो, समुद्र मंथन करो। आगे बहुत सुंदर समुद्र मंथन की कथा आएगी। आप सब भक्तों से निवेदन है, इस कथा में आइए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। आज एकादशी है, आज 12 बजे तक सबको जागरण करना है, इसलिए कुछ देर आप विश्राम कर लीजिए। 5:30 बजे हैं, 7:30 बजे तक फिर से आप सब लोग यहाँ पर आ जाइए। जो दूर के गांव से आए हैं आप जा सकते हैं, इस गांव वालों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। 7:30 बजे फिर से हम यहाँ पर मिलेंगे और इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।